अथ परिच्छेद अथ काव्यभेदमाह काव्यं ध्वनिर्गुणीभूत व्यंगं चेति विधामतं तत्र वाच्या अतिशयिनी व्यंगे ध्वनिस्तत्काव्यम् उत्तमं वाच्यादि अधिकं चमत्कारिणी व्यंग्यार्थे ध्वनित्या अस्मिन् इति व्युत्पत्त्या ध्वनीनामो मतं काव्यम् भेदौ ध्वनिरपि द्वारी हरि इति पीतौ लक्षणाभिरामूलौ अविवक्षितं वाच्यो अन्यो विवक्षितान्यपरपरवाश्च तत्राविवक्षितवाच्यो नाम लक्षणामूलः ध्वनिः लक्षणामूलत्वाद् एवान्नवाच्यं विवक्षितं बाधितस्वरूपं विवक्षितान्यपरवाच्यस्व अविधामूलः अत एवान्नवाच्यं विवक्षितं अन्यपरं व्यङ्गनिष्ठम् अत्र हि वाच्यो अर्थः स्वरूपं प्रकाशन्नेव व्यङ्गार्थस्य प्रकाशकः यथा प्रदीपो घटस्य अविधामूलस्य बहुविषयतया पञ्चधा निर्देशः अविवक्षितवाच्यस्य भेदमवाह अर्थान्तरं संक्रमिते वाच्यम् अन्त्यन्तं तिरस्कृते अविवक्षितवाच्योऽपि ध्वनिर्द्वयो विवक्षमीक्षति अविवक्षिताच्यो नाम ध्वनिरर्थान्तरसङ्क्रमित्ववाच्यो अन्त्यन्तिरस्कृतवाच्यश्चेति द्विविधः यत्र स्वयन्मनुपयुज्यमानो मुख्यो अर्थः स्वविशेषरूपे अर्थान्तरे परिणमति तत्र मुखार्थस्य स्वविशेषरूपान्तर सङ्क्रामित्वादनार्थान्तरसङ्क्रमित्ववाच्यम् यथा कदली कदली करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः पुनस्त्रित्रये अपि बिभ्रति तुल्लामिदं मुरुयुगं न क्षमोरुद्यशः अत्र तृतीयद कदल्यादिशब्दाः पौनरुक्त्याभिया सामान्य कदल्यादिरूपे मुख्यार्थे बाधिताचार्यादि गुणविशिष्ट कदल्यादिरूपमर्थम् बोधयन्ति जान्यान्त्य अतिशयश्च व्यङ्ग्यः यत्र पुनः स्वार्थः सर्वथा परित्यज्यन् अर्थान्तरे परिणमति तत्र मुखार्थस्यान्तय अन्तिरस्कृत तत्त्वादयन्त्यं तिरस्कृतवाच्यं यथा निःश्वासान्त्य ईवाक्यश्चन्द्रमान् प्रकाशति अत्रान्तशब्दो मुख्यार्थे बाधितेयप्रकाशरूपमर्थम् बोधयति अप्रकाशम् अतिशयश्च व्यङ्गयः अन्धत्वा प्रकाशस्योः सामान्यविशेष भावाभावान् अर्थान्तरसङ्क्रमित्तवाच्यत्वम् भं धम्मीय विसत्सोऽसो सुवणो अजमारिणो देण गोलाळ इक्कच्छ पुनङ्गवासिण दर्यसहिषेण अथ प्रकृतगाथायाम् अत्र भ्रम धार्मिकः इत्यतो भ्रमणस्य विधिः प्रकृते अनुपयुज्यमानतया भ्रमणनिषेधे पर्यव अस्यतीति विपरीतलक्षणशङ्काम् न कार्य यत्र खलु विधिनिषेधायुत्पश्यमानादेव विधिविध्यो पर्यव स तत्रैव तद अवसरः यत्र पुनः प्रकरण आदि चलनेन विधिनिषेधयोरनिषेधविधि अवगम्यते तत्र ध्वनिमेव प्रयुक्तम् हिन्दि चतुष्पर्शे मुरलीध्वनि परिमोहितलोकः लीलाहृत सुरमुनिजनशोकः तरणीसुता तटनी विलासि हरतु हरतु दुरितं ब्रजवासि काव्य का लक्षण आदि कह चुके अब काव्य के भेद बताते हैं काव्यम इति काव्य दो प्रकार के होते हैं एक ध्वनि दूसरे गुणीभूत व्यंग ध्वनि पद में जब अधिकरणार्थक प्रत्यय मानते हैं तो ध्वन्यदि अस्मिन् इति ध्वनि यह उत्तम काव्य का वाचक होता है और करण प्रधान मानने पर ध्वन्यदि अन इति ध्वनि व्यंजनार्थ शक्ति का बोधक होता है एवं भाव प्रधान मानने पर ध्वनम ध्वनि रसादि की प्रतीति का और कर्म प्रधान धन्य वेद इति ध्वनि ही रसादि व्यंग का वाचक होता है। वाच्य इति जिस काव्य में व्यंग अर्थ वाच्य अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार हो उसे ध्वनि कहते हैं, वह उत्तम काव्य है। यहाँ ध्वनि पद अधिकरण प्रधान है। भेदौ इति ध्वनि के दो भेद होते हैं, एक लक्षणामूलक ध्वनि दूसरी अभिधामूलक ध्वनि। इनमें से पहली तो अविवक्षी परवाच्य और दूसरी को विवक्षित अन्य परवाच्य भी कहा जाता है। लक्षणामूलक होने के कारण ही इसमें वाच्य अर्थ अविवक्षित अर्थात बाधित रहता है, क्योंकि लक्षणामुख्य अर्थ प्रकट वाच्य प्रकट बंध के बाद में ही होती है, यह पहले कहा गया है। विवक्षित अन्य परवाच्य ध्वनि अविधामूलक है, अतः उसमें वाच्य प्रजत अविधेय प्रजत बंध अर्थ विवक्षित होता है। यदि अविधेय अर्थ विवक्षित न रहे तो वह ध्वनि अविधामूलक हो ही नहीं सकती, परंतु विवक्षित होने पर भी यह अविधेय अर्थ अन्य परक अर्थात व्यंग्य अर्थ को प्रधानता द्योतन करने में व्यापृत रहता है, अतः इसे विवक्षित अन्य परवाच्य कहते हैं। अतः इस ध्वनि में वाच्य अर्थ अपने स्वरूप का प्रकाश करता हुआ ही व्यंग अर्थ में का प्रकाश करता है, यथा इति जैसे दीपक अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही घटादि का प्रकाशक होता है। अविधामूलक ध्वनि का विषय बहुत है, अतः उसका पीछे उल्लेख किया और लक्षणामूलक का थोड़ा विषय है, अतः सूची न्याय से इसे पहले कहा है। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के भेद कहते हैं अर्थांतरम इति। अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी दो प्रकार का है, पहला वाच्य के अर्थांतर में संक्रमित होने पर अर्थांतर संक्रमित वाच्य और दूसरा वाच्य के अत्यंत तिरस्कृत होने पर अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। अत्र इति जहाँ शब्द का मूल्य अर्थ प्रकरण में स्वयं अनुपयोज्यमान प्रकट बाधित प्रकट बंध होने के कारण अपने विशेष स्वरूप अर्थांतर में परिणत होता है उसे अर्थांतर संक्रमित वाच्य कहते हैं। यह अन्वय अर्थ संज्ञा है, उदाहरण कदला इति कदली कदली ही है और करब करब ही है। ब्रैकेट हाथ की छोटी उंगली से पक्षे तक हथेली के बाहरी भाग को करम कहते हैं। हाथी की सूंड भी हाथी की सूंड ही है, वास्तुतः इनमें से कोई भी उपमा देने योग्य नहीं है। मृगनयनी सीता के ये दोनों उरु ब्रैकेट व्यंग है ब्रैकेट बंद तीनों लोकों में अपना सादृश्य नहीं रखती। प्रसन्न राघव नाटक में स्वयंवर के समय यह रावण की उक्ति है। अत्र इति यहाँ दूसरी बार आए हुए कदली यदि पद यदि मुख्य अर्थ का ही बोधन करे तब तो पुनरुक्त दोष हो जाए, अतः वे मुख्यार्थ में बाधित होकर ध्यान ध्यान गण विशेष कदली आदि का बोधन करते हैं। अतः अर्थांतर में संक्रमित है कदली ज्ञान कदली है इत्यादि अर्थ होता है। यहाँ प्रयोजन वजी लक्षण है ज्ञान आदि गुणों की अधिकता व्यंग है, वही लक्षण का प्रयोजन है। तात्पर्य किसी के विशेष गुण को सूचन करने के लिए एक शब्द की दो बार बोलने की चाल है। जैसे किसी ने कहा कि कौवा कौवा ही है और कोकिल कोकिल ही है, यहाँ दूसरी बार जो शब्द बोला गया है उसमें यदि कुछ विशेषता न माने तो पुनरुक्त दोष हो जाएगी। दूसरे अनुभव से विशेषता का अपलाप करना पड़े उक्त वाक्यों में दूसरी बार बोले हुए उन्हीं पदों में साफ विशेषता प्रतीत होती है, अतः इस प्रकार के उदाहरणों में यह प्रक्रिया मानी जाती है कि दूसरी बार आए हुए कौवा कोकिल आदि पदों के मुख्य अर्थ का प्रकरण में कोई उपयोग नहीं है। यदि दूसरी बार बोले कि कोकिल पद का भी कहीं अर्थ वही अर्थ हो जो पहले का है तो दोबारा बोलना ही व्यर्थ है, उसका प्रकृति में कोई उपयोग नहीं है। अतः कौवा कौवा ही है और दूसरे कौवा पद का कटु रटन परिपाटी पटुत्व विशिष्ट प्रगट काम काम की कड़वी आवाज से कान फोड़ने वाला प्रगट बंग यह अर्थ लक्ष्य और कोकिल कोकिल की है या दूसरे कोकिल का पद कल का कही को मलक तो प्रगट मधुर मधुर कुकुह के कानों और मन को तृप्त करने वाला प्रगट बंग यह अर्थ लक्ष्य होता है। ये दोनों अर्थ मुख्यार्थ के ही विशेष स्वरूप है, मुख्य अर्थ से अत्यंत भिन्न नहीं है। अतः यहाँ अर्थांतर संक्रमित वाक्य है। यदि यह कह दे कि कवा कड़वा बोलता है तो इस वाक्य में कवे में उतनी निकृष्टता नहीं प्रतीत होती है जितनी
यह कहने से प्रतीत होती है कि कवा कवा ही है और कोकिल
मीठा बोलता है। इस वाक्य में भी वह उत्कृष्टता का बोधन नहीं है जो कोकिल कोकिल ही है। यह कथन उत्कृष्टता और निष्कृष्टता का अतिशय जताने के लिए यह लक्षण का आश्रय लिया गया है। यही बात यहाँ व्यंग प्रयोजन है। इस प्रकार अन्यत्र भी जानना यत्र पुनः यह शब्द अपने मुख्य अर्थ को सर्वथा छोड़कर अर्थांतर में परिणत होता है वहाँ वाक्य भी अत्यंत तिरस्कृत होने के कारण अत्यंत तिरस्कृत वाक्य ध्वनि होती है। जैसे निःश्वास इति रव्या सौभाग्यस्तुषा अरावृतमंडल यह इस पद का पूर्वार्ध है। निःश्वास से अंधे प्रकट मलिन प्रकट मन दर्पण प्रकट आय प्रकट मन के असमान चंद्रमा प्रकाशित नहीं होता। अर्थ इति अर्थ शब्द का अर्थ है लोह नहीं और लोचनों से हीन वियुक्त वही कहा जा सकता है जिससे इसके या तो पहले लोचन रहे हो या कम से कम उनकी लोचनों की योग्यता हो। जैसे मनुष्य पशु आदि अंधे कहे जाते हैं परंतु शीशे के न तो कभी लोचन थे और न उसमें
उनकी योग्यता अतः
उसे लोचनहीन या अंधा कहना नहीं बनता। इसलिए यहाँ अर्ध शब्द का मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण उससे लक्षण द्वारा अप्रकाश मुख्य अर्थ बोधित होता है। जैसे अंधे आदमी के नेत्रों पर किसी वस्तु की छाया नहीं पड़ती अथवा जैसे उसे कोई वस्तु प्रकाशित नहीं होती इसी प्रकार शीशे में भी किसी का प्रतिबिंब नहीं पड़ने पर उसे अंधा कहा जाता है। यह भी प्रयोजनवती लक्षण है। यहाँ अप्रकाशत्व का अधिकतर अध्ययन करते हैं वही लक्षण का प्रयोजन है। अंधत्व यह ध्वनि अर्थांतर संक्रमित वाच्य नहीं कही जा सकती क्योंकि यह अंधत्व और अप्रकाशत्व में व्यापकत्व व्यापक भाव न होने के से इसमें सामान्य विशेष भाव नहीं है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि वही होती है जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का सामान्य विशेष भाव हो। मुख्यार्थ व्यापक हो और लक्ष्य अर्थ उसका व्याप्य होता हो। अविधा मूलक ध्वनि से उच्च लक्षणा मूलक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का भेद दिखलाने के लिए संदिग्ध उदाहरण देते हैं। मम इति भ्रमधारमिक विश्वस्तः स सुनको वध मारितस्तेन गोदा नदी कक्षकुंज वासिन सिंहेन। अर्थ हे भगवत जी अब तुम बेखत के घुमा करो उस कुत्ते को जो तुम्हें तंग किया करता था। आज गोदावरी नदी के किनारे उस कुंज में रहने वाले मस्त सिंह ने मार डाला। यह अविधामूलक ध्वनि है। किसी कुलटा के संकेत कुंज में कोई भगत जी फूल तोड़ने जाने लगे। इन्हें देख उसने अपना कुत्ता इनके पीछे हुंकारा परंतु ये उस कुत्ते के भूखते रहने पर भी हट हट पूछ पूछ करते हुए गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए ठीक उसी कुंज तक पहुँचे पहुँच ही तो गए। इस पर वह बहुत तंग हुई और दूसरे दिन इनके सामने होकर उक्त पद्य कहने लगी। इस पद्य में देखत के घूमो इस वाक्य से आपातः भ्रमण का विधान प्रतीत होता है परंतु इस प्रकरण में प्रकरण के जानने पर बात और पर्याय लोचना के अनंत वह उलट जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रतीत होता है कि कल तो या होता ही था जिससे तुम इतने तंग हुए थे, परंतु आज ही कुंज से मस्त सिंह बैठा है जो देखते ही आपका नैवेद्य लगा दे लेगा। अतः अब उस रास्ते की ओर आँख उठाकर भी न देखना या भी न समझना कि दो एक दिन में सिंह कहीं चला जाएगा। वह वही क्या बल्कि उसी कुंज का निवासी है, इसलिए अब आप इधर उधर जाके ही नहीं, यह भाव प्रकरण का पर्याय रोचन करने का प्रतीत होता है और वाक्य अर्थ की विधि व्यंग अर्थ में जाकर निषेध में परिणत हो जाती है। इस पद में विपरीत लक्षणामूलक अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि का संदेह दिखा के उसका निराकरण करते हैं। अर्थ यहाँ भ्रमण की विधि प्रकृति में अनुपयुक्त होने के कारण निषेध के परिणत होती है, इसलिए यहाँ भी तप कृतम बहु इत्यादि की तरह विपरीत लक्षण है। यह मत समझना क्योंकि विपरीत लक्षण वही होती है जहाँ विधि अथवा निषेध बोलने के साथ ही तुरंत विपरीत होकर निषेध यथवा विपरीत विधि रूप में परिणत हो जाए, जैसे अहो पूर्ण सर्वयत्र लुंठतः स्नानन्ति मानवाः। वह यह भरा हुआ तालाब है जहाँ आदमी लोट लोट कर नहा रहे हैं। यहाँ लोट लोट कर नहाना सुनते ही पूर्ण शब्द अपूर्ण अर्थ में परिणत हो जाता है। पूर्णता की विधि पूर्णत्व के निषेध में परिणत हो जाने जाती है। अथवा किसी ने कहा कि यदि जम यातनाओं से प्रेम है तो ईश्वर का भजन कभी न करना, जम यातनाओं से भला प्रेम किसे होगा। अतः इस वाक्य में भजन का निषेध विधि प्रकट ईश्वर भजन प्रकटपन में परिणत हो जाता है। यत्र पुनरीति, परंतु जहाँ विधि या निषेध प्रकरण आदि का पर्यालोचन करने के अनंतर विपरीत अर्थ में परिणत हो प्रकट, जैसे हम धम्मी में प्रकटपन, वहाँ अभिजामूलक ध्वनि ही मानी जाती है लक्षण नहीं। पचित वाक्य आख्या पचिताधनम पूर्वत्र लक्षण अत्राधे मुख्यार्थस्यार्थन्तरे संक्रमणं प्रवेशः न तु वित्तिरोभाव। अत एव प्राह स्वार्थालक्षणा द्वितीये तु स्वार्थस्यान् अन्त्यं तिरस्कृतवाच्य हत्वा स्वार्थः विवक्षित अभिधेयो अपि द्विभेदः प्रथमं मतः असंलक्षण क्रमो यत्र व्यंगयो लक्ष्यक्रमस्तथा विवक्षितान्य परवाच्यो अपि ध्वनि संलक्ष्य कर्म व्यंग्यः संलक्ष्य कर्म व्यंग्येति द्विधम् तत्रार्थो रसभावादिरेक एवात्र गण्यते एको अपि भेदो अनन्तत्वात् संख्येयस्तस्य नैव यत् उक्तस्वरूपो भावादिर संलक्ष्य कर्म व्यंग्यः। अत्र व्यंग प्रतीते विभावादि प्रतीति कारणत्वात् क्रमो अवश्य वस्यस्मस्ति इति फलपत्र सतव्यति भेद वल्या भवान् संलक्ष्यते येषु रसादिषु च एकस्यापि भेदस्य ननन्त्वात् संख्याम् असत्यत्वात् संलक्ष्य कर्म व्यंग्यध्व आत्मनिर्नाम काव्यम् एकभेदम् वक्तम् तथा हि एकस्यैव श्रृंगारस्य कोऽपि संभोगरूपो भेदः परस्परा अलिंग धर्मान् चुम्बनादि भेदात् प्रत्येकम् च विधावादि वैचित्र्यात् संख्याम् असत्यः का गणना सर्वेषाम् काव्यार्थो भयसत्य युद्धे व्यंगे अनुस्वार सन्निधे ध्वनिर्लक्ष्य क्रम व्यंगस्त्रिविध कथितो बुधै क्रमस्य लक्ष्यस्ता देवानुरूपणो अनुरूपो यो व्यंगस्तस्य शब्दसत्यद्भुवत्वेन अर्धसत्यस्युद्भवत्वेन शब्दार्थसत्यस्तेन च दैविध्यासंलक्ष्य क्रम व्यंगय यनाम्नो ध्वनि काव्यस्यापि त्रैविध्यम् यत्र तत्र पश्व अलंकार रूपत्वात् शब्द शब्द सत्यात् बोध इह अलंकार शब्दस्य पृथगो उपादान अलंकारम् वस्तुमात्रम् गृहाते तत्र वस्तु रूप शब्द सत्य भूत व्यंगयो यथ प्रकृत गथ पंथीयण येथ सत्थर मध्ये मणम पत्थर तले गामे उपवोहरम पोखीणम जय वससी तापस सुख अत्र सत्थरादि शब्द सत्या यद्योपयोग भोक्ष मोहसि तदा अश्वेदी वस्तु व्यज्यते उक्त बात का प्रमाण देते हैं तदुक्तम इति पहिल इति कहीं बाध्य अर्थात विपरीत अर्थ में पर्यवसान होकर पीछे ख्याति अर्थात अन्वय ज्ञान होता है और कहीं ख्यात अर्थात वाक्यार्थ से अधिक पदार्थ का बाध प्रगत विपरीत अर्थ में पर्यवसान प्रगत बंद होता है। पहले पक्ष में लक्षण अर्थात लक्षणामूलक ध्वनि होती है और दूसरे में अविदा अर्थात अविदा मूलक ध्वनि होती है। तात्पर्य यह है कि जहाँ मुख्य अर्थ का अन्वय या तात्पर्य बाधित होता है वही लक्षण हो जा सकती है अन्यत्र नहीं। अतः जिन वाक्यों में पदार्थ का संबंध अनुपन्न होता है वही लक्षण और लक्षण मूलक उक्त ध्वनि होती है और जहाँ पदों के मुख्य अर्थ का अन्वय हो जाने के अनंतर किसी कारण से बाध की प्रतीति होती है वहाँ लक्षण ही नहीं हो सकती। फिर लक्षणामूलक ध्वनि वहाँ कहाँ से आएगी? अतः ऐसे स्थलों पर ब्रह्म धार्मिक इत्यादि को में अभिधा मूलक ध्वनि ही जानना अत्राध्य। यहाँ पहले अर्थांतर संक्रमित वाक्य में तो मुख्य अर्थ का अपने विशेष रूप अर्थांतर में संक्रमण अर्थात प्रवेश मात्र होता है तीनोधान नहीं होता। अतव यहाँ अजहस्त्रकार था लक्षण होती है और दूसरे ब्रैकेट अत्यंत तिरस्कृत वाक्य ब्रैकेट बंद में मुख्य अर्थ अत्यंत तिरस्कृत होता है अतः वहाँ यह स्वार्थ लक्षण होती है। अविदा मूलक ध्वनि का निरूपण करते हैं विवक्ष अन्य परवाच्य ध्वनि भी प्रथम दो प्रकार का होता है। एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग जिससे व्यंग अर्थ का क्रम लक्षित न हो सके और दूसरा लक्ष्य क्रम व्यंग तत्र इति। इनमें से पहले असंलक्ष्य व्यंग के उदाहरण रस भाव आदि है इन सबको ये कहीं मान लिया गया है क्योंकि अंत अनंत होने के कारण इनमें से एक के विभेदों का पूरा वर्णन नहीं किया जा सकता। उक्त इति जिनका शब्द लक्षण पहले कह आए हैं वे भाव आदि असंलक्ष्य व्यंग होते हैं इन रस का अभाव आदि के प्रति विभाव आदि ज्ञान पूर्वक ही होती है। अतः कार्य कारण के परवापर्य का क्रम तो अवश्य रहता है परंतु वह अतिशीघ्र हो जाने के कारण लक्षित नहीं होता। जैसे सौ कमल के पत्तों को नीचे ऊपर रखकर सुई की छेद से एकदम सुई उसके आर पार हुई प्रतीत होगी यद्यपि सुई ने क्रम से ही एक एक करके सब पत्तों को छेद दिया है परंतु शीघ्रता के कारण प्रत्येक की क्रिया पृथक पृथक प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार यहाँ भी जानना येसु रसादिषु इन उक्त निर्वेद आदि भावों और रसादिकों में से एक के भेद भी अनंत होने के कारण गिने नहीं जा सकते। अतः असंलक्ष्य व्यंग ध्वनि का एक भी भेद मान लिया गया है। असंख्यत्व दिखाते हैं तथा इति एकस्मैदिति अकेले संभोग श्रृंगार के एक भेद में परस्पर आलिंगन अधरपान चुंबन आदि अनेक भेद हैं। फिर उनमें भी विभाव आदि की अनंत विचित्रताएं है इसलिए यह अकेला ही नहीं गिना जा सकता। सब रसों के भेद गिनने की तो बात ही क्या है। लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि का निरूपण करते हैं शब्दार्थ इति। जिस प्रकार घंटा बजने पर पहले एक जोर का धड़का होने के बाद अनुस्वार क्रम से धीरे धीरे उसकी मधुर ध्वनि गूंज सुनाई पड़ती है उसी प्रकार उनके सादृश बाह्य अर्थ के प्रतीत होने से अनंतर यहाँ क्रम से व्यंग अर्थ प्रतीत होता है, वह सत्य काव्य संलक्ष व्यंग ध्वनि हो कहता है। इसके तीन भेद होते हैं, एक शब्द सत्य उद्भव ध्वनि जहाँ शब्द के सामर्थ्य में व्यंग अर्थ प्रतीत होता है, दूसरा अर्थ सत्य उद्भव ध्वनि जहाँ अर्थ की विशेषता के कारण व्यंगार्थ भाषित होते हैं, और यहाँ उभय सत्य उद्भव ध्वनि यहाँ दोनों के सामर्थ्य से व्यंग का ज्ञान होता है। क्रमश इति व्यंग अर्थ का लक्ष्य लक्षित होने के कारण ही ध्वनि को अनुरूप अनुरूप कहा जाता है। अनुरणम शब्द का अर्थ है पिछली ध्वनि, अनु अर्थात पश्चात, प्लम अर्थात ध्वनि, घंटे आदि को बजाने पर पहली आवाज के बाद जो मधुर ध्वनि कुछ देर तक सुनाई रहती है उसी को अनुरणन अनुस्वार आदि कहते हैं। जैसे इस अनुरणन के पहले की झंकार के साथ स्पष्ट प्रतीत होता है, उसी प्रकार प्रकृत ध्वनि में भी पहले होने वाले वाक्य अर्थ के साथ पौरवा पर स्पष्ट हासिल होता है। इस पौरवा पर एक क्रम के लक्ष्य होने के कारण यह ध्वनि संलक्ष क्रम अथवा अनुरूप रूप चाहता है। रस की भांति इसका क्रम अलक्ष्य नहीं होता, जैसे घंटा बजाने पर छनाके के पीछे अनुस्वार प्रतीत होता है, इसी प्रकार व्यंग अर्थ वाच्य के पीछे प्रतीत होता है। जैसे छनाके की अपेक्षा अनुस्वार मधुर होता है, वैसे ही व्यंग भी वाच्य से मधुर होता है। और जैसे छनाका करने के लिए पुरुष व्यापार अर्थात घंटा ठोकना अपेक्षित होता है, अनुस्वार के लिए नहीं, वह स्वयं उसी शब्द से उत्पन्न होता ही होता है। इस प्रकार वाच्य के लिए पुरुष व्यापार शब्द उच्चारण अपेक्षित है, व्यंग्य के लिए नहीं। शब्द के व्यंग को अनुस्वार के सदृश कहा है, यह अनुस्वार व्यंग अर्थ कहीं शब्द से कहीं अर्थ से और कहीं दोनों से प्रतीत होता है। अतः इनके तीन भेद होते हैं, इसी के कारण इससे युक्त संलक्ष क्रम व्यंग नामक ध्वनि काव्य प्रथम उत्तम काव्य प्रकटवन के भी तीन भेद होते हैं। तत्र इति इनमें भी शब्द शक्ति से उत्पन्न ध्वनि के भेद दिखाते हैं। वास्तव इति शब्द के शक्ति से प्रतीय मान व्यंग दो प्रकार का होता है, एक वस्तु और दूसरा अलंकार रूप। यह अलंकार का पृथक ग्रहण किया गया है, अतः वस्तु पद में अलंकार रहित वस्तु का ग्रहण होता है। शब्द सत्य उद्भव वस्तु स्वरूप व्यंग का उदाहरण पंथीय इति अर्थात पंथ नात्र स्वर स्मरति मनक प्रस्तर स्थले ग्रामे उन्नत पयो धर्म प्रेक्ष यदि वसति तद वस। पति इस पहाड़ी गांव में सत्थर बिस्तर अथवा शास्त्र तो बिल्कुल नहीं है, हाँ यदि उठे हुए पयोधरों ब्रगेट अस्तरों अथवा बादल को देख कर ठहरना चाहते हो तो ठहर जाओ, यह पति के प्रति स्वयं दूती की उक्ति है। अप्रति यहाँ पहले यह अर्थ प्रतीत होता है कि यहाँ बिस्तर आदि को तो नहीं है, हाँ उबले हुए बादलों को देख कर जैसे तैसे रात काटने की चाहते हो तो ठहर जाओ, परंतु सफर और पयोहर पदों की शक्ति में यह अर्थ व्यक्त होता है कि परदारगमन का निषेध करने वाले शास्त्रों की तो यहाँ कुछ चलती नहीं है। यदि उपभोग के योग्य हो और उन्नत स्तरों को देखकर रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, प्रकृति का सफर शास्त्र और ईश्वर शब्द दोनों में दृश्य अलंकार रूपो यथा दुर्गा अलंघित विग्रह इत्यादि अत्र प्रकारणे कस्यो अमानामहं देवी वलभवा आनदेव नाम निरुपतेर वर्णने द्वितीयार्थ सूचित प्रकरणे कस्य पार्वती वलभस्य वर्णनम संबंधं वा प्रसांक्षी द्वितीय स्वर भानुदेव योरमानुपमे यथावह कल्पते तदत्र उमावलभ उमावलभ इव इत्यु अलंकारो व्यंग्य यथावा अमितः समितः प्राप्तैरुक्त हर्षद प्रभो अहित सहित साधु यशोभिरतामसी अत्रामित इत्यादया अपिशब्दा भावाधिरोध भावो व्यंग्यः व्यंगस्या अलंकार्यत्वे अपि ब्राह्मण समलः न्यायदा अलंकारत्वं उपचर्यते वस्तु बालंकृतिर्वापि द्विधार्थ संभवीषतः कविः प्रोढ निषिद्धो वा तन्निपथस्य चेतिः सद्विस्तैर्यज्यमानस्तु वस्त्वलङ्काररूपकः अर्थसत्ययुद्धवो व्यङ्गो याति द्वादशभेदताम् स्वतः सम्भवी औचित्यात् बहिरपि सम्भाव्यमानः प्रौढोक्त्या सिद्धत्वौचित्येन तत्र क्रमेण यथा सृष्टिः प्रतिवेशिनि निहत्यस्मद् गृहे दास्यसि प्रायणस्योः पीता न विरसा कोऽपि रसः पास्यति एका किन्यपि यामि सत्वरमिदः स्त्रोतस्तमालाकुलम् निरङ्घ्रास्त अनुमालिखन्तु जरच्छेदा न लग्न भयः अनेन स्वतः सम्भाविन वस्तुमात्रणैस्तत् प्रतिपादिकाय भावी परपुरुषोपभोगजनखतादिगोपनरूपम् वस्तुमात्रम् यजते श्रीमन्दायते तेजो दक्षिणास्याम् स्वेन रवेरपि तस्यामेव रघुः पाण्ड्याम् प्रतापम् न विषेहिरेः अनेन स्वतः सम्भोविनो अनेन स्वतः सम्भविन वस्तुन रवितेजसो रघुप्रतापो अधिक इति व्यतिरेकलङ्कार गच्छते आपत् अन्तममुम् चातुरीकृत् पराक्रमः बलोऽबलो लोकयामास मातङ्गमेव केसरि अत्रोपलङ्कारेण स्वतः सम्भविना व्यञ्जनपार्थेन बलदेवः क्षणोऽनैव यदुदारिणः क्षयम् करिष्यतीति सुव्यज्ञते गाढकान्तदशरक्षितव्य यथा सङ्कटधरी मधुजनस्य यथ यः ओष्ठविद्रो मदला अन्यम् युच्छत्वे दर्शन्युधिरुषाद्विजाधरम् अत्र स्वतः सम्भविन विरोधालङ्कारेणाधरो निर्दिष्टः सत्रौ व्यापादिताश्चेति समुच्चलङ्कारो व्यङ्गः सत्यैश्वरहिमासोण ताप अप्येयि जुवै जलखमूहे अहिलवसा आरमूहे कणवपल्लवपत्तले अलङ्कसरे अत्र वसन्तः सरकारः कामो धन्वे युक्तयोपलक्ष्यम् पुष्पाणि सा इति कविप्रौढोक्ति सिद्धम् वस्तु प्रकाशिभवनम् मदनविश्रेय भरणरूपम् वस्तु रजनीषु विमलभानु करजालेन प्रकाशितम् विर भवलयति भुवनमण्डलम् अखिलम् तव कृत्ति सन्ततिः सतम् अत्र कविप्रौढोक्ति सिद्धेन वस्तुना कृति सन्ततेश्चन् करजालादिकाल प्रकाशत्वेन व्यतिरेक अलङ्कारो व्यङ्गः प्रसारणकृत्यभ्यष्टक्षणाम् राक्षसीयः मणिव्याजेन पर्यस्ताः प्रसिद्ध्याम् सुविन्दवः अत्र कविप्रौढोक्ति सिद्धेनाप्यहम् चलङ्कारेण भविष्यद्राक्ष श्रीविनाशरूपम् वस्तु त्यज्यते सम्मिले नवमल्लिका समुदयो हस्ते सीताव्योरूहम् हारः कण्ठ तटे पयोधरयुगे श्रीखण्डलेपोधनः एको अपि दिक्कलिङ्गभूमि कीलकीर्तिया शिरयोः नानामण्डलतः पुरन्दरम् पुरी वा भ्रुवम् विग्रहे अत्र कविप्रौढोक्ति सिद्धेन रूपालङ्कारेण भूमिपुष्टौ अपि स्वर्गास्तथा नाम उपकारम् करोषि इति विभावनालङ्कारो यज्यते शिखरे क्वनु नाम चञ्चिरम् किम् विधानम् वाक्तरोक्तमः सुमुखीयेन तवाधर पाटलम् दहति बिम्बलफलम् सुखशावकः अत्रादेन किमिलिबद्धस्य कस्यचित् कामिनिः प्रहक्ति सिद्धेन वस्तुना तवासरः पुनिया अतिशयलभ्यः इति वस्तु प्रतीयते। हिंदी शब्द से अलंकार रूप्यम जैसे दुर्गा लंघित इत्यादि पूर्वोक्त पद अत्र इति यह उमा नामक सराही के प्रति राजा भानुदेव का वर्णन प्रकृत है, परंतु दुर्गा आदि शब्दों से पार्वती शंकर भी प्रतीत होते हैं। यह अप्रकृत अर्थ असंबंध न हो जाए इसलिए इन दोनों राजा और शिव का उपमानोपमेय भाव कल्पित किया जाता है। अतः यहाँ उमा बलभ अर्थात राजा और उमा बलभ अर्थात शिव के सदृश है, यहाँ उपमा अलंकार व्यंग है। दूसरा उदाहरण अमित इति समित अर्थात युद्ध में अमित अर्थात अपरिमित शक्ति युक्त और आपने अपने प्राप्त किए हुए उत्कर्षों से लोगों को हर्ष देने वाले हे प्रभु, आप अच्छे यश से सहित युक्त और असज्जन पुरुषों को अहित है या विरोध का वाचक अपशब्द न होने के कारण अमित समित और अहित सहित के विरोधाभास अलंकार व्यंग है। यद्यपि अलंकार का वह होता है जो किसी को भूषित करे, उपमा आदि रस को भूषित करते हैं, परंतु व्यंग अलंकार स्वयं भूषित होते हैं, किसी अन्य को भूषित नहीं करते, क्योंकि व्यंग अर्थ सबसे प्रधान माना जाता है। तथापि ब्राह्मण श्रवण न्याय से व्यंग दशा में भी अलंकार पद का प्रयोग होता है। जैसे यदि कोई ब्राह्मण जैन साधु श्रवण हो जाए तो वह ब्राह्मण नहीं रहता, परंतु पहली दशा के अनुसार उन्हें ब्राह्मणों अयम श्रवणकः कह देते हैं। इसी प्रकार व्यंग होने पर भी उपमा आदि में अन्यत्र दृष्ट अलंकार पद का प्रयोग जन्म एक अवस्था में देखे हुए धर्म का दूसरी अवस्था में गौर प्रयोग करने पर ब्राह्मण समृद्ध न्याय का असर अवसर होता है। अर्थ सत्य भाव व्यंग का निरूपण करते हैं। वस्तु वेति पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कुछ तो घट पटादि वस्तु स्वरूप और कुछ उपमा आदि अलंकार स्वरूप। इन दोनों में कुछ स्वतः भावी होती है जो काव्य के अतिरिक्त बाहर लोक में भी देखे जाते हैं, जैसे घट पटादि और कुछ कवि की प्रौढ़ोक्ति उक्ति प्रागल्भ्य से ही कल्पित होते हैं, बाहर नहीं देखे जा सकते। जैसे कवो को सफेद करने वाली चंद्रिका लोक में ऐसे चंद्रिका देखी थी जिसमें काली चीज सफेद हो जाए, परंतु काव्यों में ऐसा वर्णन बहुत मिलता है। जैसा कर्ण कैव संख्या कुवल लयम कुर्वन दिगांता अपि इत्यादि एवं कुछ नाटक आदि में कल्पित पात्रों के प्रौढ़ोक्ति के कल्पित होते हैं। इस प्रकार पदार्थों के छाप होते हैं। इन छापों से जो अर्थ व्यंग होता है वह भी कहीं वस्त्र रूप होता है और कहीं अलंकार रूप। इसलिए अर्थ शब्द के उद्भव व्यंग के 12 भेद होते हैं। इस विषय में विशेष विचार आगे चलकर दशम कारिका में के अंत में करेंगे। कर्म के उदाहरण देते हैं। दुष्टम की हे पड़ोसी, जरा इधर हमारे घर की ओर भी नजर रखना। इस लल्ला के बाप शायद कुएं के स्वाद पानी नहीं पियेंगे। मैं जल्दी के मारे अकेली ही यहाँ से कपाला कुल अर्थात आमनुष के पेड़ों से ढके स्रोत पर जाती पुरानी दलों को निविड़ ग्रंथिया देह के खरों करे तो करे ब्रैकेट पर जाऊंगी अवश्य ब्रैकेट बंद आन कीजिए। यहाँ सब पदार्थ स्वतः संभवी लोक प्रसिद्ध है, उसे कहने के शरीर में भावी पर पुरुष के उपभोग से उत्पन्न होने वाले नक्षत्र आदि का गोपन वस्तु व्यक्त होता है या भविष्य रवि की रति की गोपना है। निशी दक्षिण दिशा में जाने से प्रकट दक्षिणायन होने पर प्रकट सूर्य का भी तेज मंद हो जाता है, परंतु उसी दिशा में पारणीय देश के राजा लोक से रघु का प्रताप नहीं सहा गया। वह रघु के दिग्विजय का वर्णन है। अनिति सूर्य के तेज से भी रघु का प्रताप बढ़कर है। यह व्यतिरेक अलंकार यह स्वतः संभवी वस्तु से प्रकाशित होता है। आपादंतम इति उस बेरुदारी को दूर से अपनी ओर झपटता देख बलभद्र ने संभल कर पराक्रम के साथ उसे ऐसे देखा जैसे मतमतल हाथी को केसरी देखे। अत्र इति यहाँ गजेंद्र और मृगेंद्र की उपमा अलंकार में यह वस्तु रूप अर्थ व्यक्त होता है कि सिंह के समान बलभद्र क्षण भर में भेड़ुदारी का विदारण डालेंगे। यहाँ व्यंजक अर्थ प्रकट उपमा अलंकार प्रकट वन स्वतः संभवी है। स्वतः संभवी अलंकार से व्यंग अलंकार का उदाहरण देते हैं गाढ़ी रण में क्रोध से ओठ छपाते हुए जिस राजा ने शत्रु रानियों के ओठ रूप विद्रुम बदल प्रकट मुंगे के टुकड़े प्रकट वन को पति के प्रगाढ़ दंत छात की व्यथा को छुड़ा दिया। अतः इस पद में जो अपने ही ओठ छपा रहा है वह दूसरे की ओठ का दुख कैसे दूर करेगा। यह स्वतः संभवी विरोधा अलंकार है। इससे इधर ओठ छपाए और उधर मारे गए यह समुच्चय अलंकार व्यंग है। वस्तुतः यह उदाहरण असंगत है। बाह्य अर्थ में व्यंग अर्थ की प्रतीति का प्रकरण चल रहा है। सब उदाहरण इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार के अंत में स्वयं विश्वनाथ जी ने लिखा है कि एवं बाह्य अर्थस्य व्यंजनकत्वे उदाहरणतम लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की व्यंजकता के उदाहरण इसके आगे दिखलाते हैं। अतः यहाँ भी बाह्य अलंकार से व्यंग अलंकार की प्रतीति का उदाहरण देना चाहिए था, परंतु प्रकृत पद्य में अभिशब्द न होने से अमितः समितः के समान विरोध अलंकार व्यंग है वाच्य नहीं। यदि निर्देशन युति के समान में स्थान में निर्देशन अभी पाठ कर दिया जाए तो यह ठीक उदाहरण हो पाएगा। कभी प्रौढ़ वस्तु से व्यंग वस्तु का उदाहरण सज्जयतिमाशो न समक दर्पयती युवती जन लक्ष्य मुखान अभिनव सहकार मुखान लक्ष्य पत्र लालनंग्यस्य स्थान। तो युवती समूह है लक्ष्य जिनका ऐसे मुखों प्रकट अग्र भागो प्रकट बंध से युक्त नवीन पल्लव रूप पत्र प्रकट पंख प्रकट बंध वाले नए नए आम्र पुष्प प्रकट मौर प्रकट बंध आज कामदेव के बाणों को वसंत मास केवल तैयारी ही नहीं करता बल्कि कामदेव के अर्पण भी कर रहा है। अत्र इति इसमें वसंत बाण बनाने वाला है, कामदेव योद्धा है, युवतियाँ लक्ष्य है और फूल बाण है। यह वस्तु कवि की प्रणोक्ति से ही स्थित है। लोक में कामदेव न कोई धनुर्धारी योद्धा दिखता है और न उसके चलते हुए बाण। अतः यह प्रणोक्ति सिद्ध वस्तु है। इससे काम उद्दीपन काल रूप वस्तु व्यतीत होती है। प्रश्न जब वसंत में सरकारत्व काम से धनुर्धारित्व व्यक्तियों के में संलक्ष लक्ष्यत्व और पुष्पों में बाणत्व का आरोप किया जाता है तब यह अस्पष्ट ही रूपक अलंकार हो गया। फिर इसे वस्तु से वस्तु की व्यंजना के उदाहरण में कैसे रखा। उत्तर मूल पद्य में सरकार धनुर्धारी आदि पदों का उल्लेख नहीं है। सुरभि भास सरान संयति अनंग्यस्य च अर्पयत् इतना ही वर्णन है जो कि वस्तु रूप ही है अलंकार रूप नहीं। रूपक अलंकार व्यंजना के द्वारा ही प्रतीत होता है। इसे विश्वनाथ जी ने वृद्धि में वसंत सरकार कामोध्वनि इत्यादि लिखा है। इसी व्यंग अलंकार के द्वारा यहाँ मदन विजयभण रूप वस्तु व्यक्त होती है। उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण दिया है। यद्यपि इसे कवि प्रणोक्ति सिद्ध वस्तु से व्यंग अलंकार के उदाहरण में रखना चाहिए, परंतु यह चरम व्यंग वस्तु रूप ही है, वही प्रधान है। अतः उसी के अभिप्राय से यह उदाहरण जानना। विश्वनाथ जी ने जिस ढंग से उपपादन किया है वह असंगत है। वसंत सरकार कामोध्वनि इत्यादि वर्णन शैली से अलंकार की प्रतीत होता है वस्तु का नहीं। कवि प्रणव की वस्तु से व्यंग अलंकार का उदाहरण रजनिष्व इति हे वीर, केवल रात्रि में ही चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होने वाले भुवन मंडल को अब आपकी कृति दिन रात शुभ्र कर रही है। अत इति यहाँ कभी प्रणोत्ति सिद्ध वस्तु प्रकट कृति कर्तिक प्रकाशन से प्रकट मन कृति चंद्रमा की अपेक्षा अधिक समय प्रकाश करती है। यह व्यतिरेक अलंकार भेद है। कभी प्रणोक्ति अलंकार से व्यंग वस्तु का उदाहरण दशानन इति उस समय रावण के मुकुटों मणियों का बहाने राक्षसों की लक्ष्मी के आंसू पृथ्वी पर गिरे। श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय रावण के मुकुट से कुछ मणियां भूमि पर गिर पड़ी। मुकुट से मणियों का गिरना बड़ा अमंगल समझा जाता है। अतएव महाकवि कालिदास ने यहाँ कहा है कि हे वे मणियां नहीं गिरी किंतु राक्षसों की लक्ष्मी के आंसू गिरे। राजलक्ष्मी आगे चलकर नष्ट होगी अतः वह रो रही है। अतिथि यहाँ मणि के रूप को छिपाकर आंसू का स्वरूप दिखाने से अपयुति अलंकार बना है। उससे राजलक्ष्मी का भावी विनाश अर्थात वस्त्र रूप सूचित होता है। राजलक्ष्मी के आंसू कभी कल्पित है स्वतः संभवी नहीं। कभी प्रणोक्ति सिद्ध अलंकार से व्यंग अलंकार का उदाहरण देते हैं। धम्मिल इति हे तैलंग देश के तिलक राजन, आपकी अकेली कृति राशि इंद्र नगरी में ललनाओं के अनेक भूषणों के रूप में परिणत हो गई। उठे हुए केशों से मल्लिका की पुष्प बनी, हाथ में श्वेत कमल बनी, गले में हार के रूप में परिणत हुई और कुछ युगल से सांद्र चंदन लेप के स्वरूप में प्रकट हुई। अत्र इति यहाँ कृति में हार आदि का आरोप करने से रूपक अलंकार होता है। वह कवि प्रणोक्ति सिद्ध है। उससे तुम पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग निवासी का उपकार करते हो। यह विभावना अलंकार व्यंग है। वस्तुतः न यहाँ केवल रूपक अलंकार व्यंजक है और न विभावना अलंकार व्यंग ही है। वास्तव में यहाँ रूपक विरोध और विशेष यहाँ तीन अलंकारों का एकाश्रया अनु प्रदेश रूप शंकर अलंकार है। रूपक तो स्पष्ट ही है, एको अपि नाना मंडनता ययौ। इस अंश में एकत्व और अनेकत्व नानत्व रूप संख्याओं का विरोध है और अपि शब्द उसका वाचक है। इसी प्रकार धमिल, हस्तकंठ और पयोधर इन अनेक स्थानों में ही एक ही कृति के रहने से एकम चा अनेक गोचरम एक विशेष अलंकार निष्पन्न होता है। तीन अलंकारों के अर्थ है प्रकट शब्द और अर्थ प्रकट मन यहाँ पृथक पृथक व्यवस्थित नहीं है, प्रत्येक अभिन्न है। अतः यह एकाश्रयान अनुप्रवेश शंकर अलंकार हुआ है। हेतु के बिना कार्य की उत्पत्ति होने पर विभावना अलंकार होता है, परंतु प्रकृत पद्य में उसकी कोई संगति नहीं बैठती। यहाँ कार्य और कारण दोनों ही विद्यमान है। कृति कारण है और मल्लिका कार्य आदि कार्य है। यदि यह कहा जाए कि कारण रूप राजा पृथ्वी पर है और उसका कार्य नव मल्लिका आदि स्वर्ग से प्रकट हुआ है, तो यह कार्य कारण भी भिन्न देशता हुई से आप असंगति अलंकार कह सकते हैं। विभावना तो तब होती है जब हेतु हो ही न। जब आप राजा को स्पष्ट रूप से भूमिष्ठो अपि कह रहे हैं तब फिर कारण का अभाव कैसे हुआ। इसके अतिरिक्त देवांगनाओं के भूषण का कारण साक्षात राजा नहीं है अपितु उसकी कृति है। कृति ही नव मल्लिका आदि के रूप में परिणत हुई है, स्वयं राजा नहीं। कृति का दिगंत कामित्व और लोकांतर गमन काव्य मार्ग में सर्वसम्मत है। इस दशा में कार्य कारण की भिन्न देशता भी नहीं कही जा सकती। इस प्रकार न तो यहाँ कारण का अभाव ही है, न कार्य कारण भी भिन्न देशता ही है और न इस भिन्न देशता में विभावना अलंकार ही निष्पत्ति ही संभव है। अतः भूमिष्ठो अपि स्वर्ग स्थानम उपकारम करोस इति विभावना अलंकारो दर्जये। यह विश्वनाथ जी का व्याख्या सर्वथा असंगत है। यदि यह कहा जाए कि कृति धम्मिल का मलिक कुसुम बनी हाथ में कल्हार कंठ से मुक्त हार और पयोधरों में चंदन लेप बनी, इस प्रकार एक ही कृति के अनेक रूपों में परिणत होने पर कोई कारण निर्दिष्ट नहीं होती है, अतः यह विभावना अलंकार है। तो भी असंगत है। जब एक ही सुवर्ण के अनेक भूषण बन सकते हैं तो एक कृति के अनेक आवरण बनने में क्या आपत्ति हो सकती है। काव्य प्रकाशकार ने इस विषय में जो उदाहरण दिया है वह बहुत अच्छा है। चाचेरम वह संजी कई वन मधुहर गृह वेशा दावे मुडमंडलम मरणम वाणी या सर्विच्छिमी व हसंती कवि वदरूह वद विनिवेशा दर्शयति भुवन मंडलम मंडली व जयति सावाणी अत्र प्रेक्षया चमत्कारै कारणम नवम नवम जगत अजंडानः निर्मितम एव इति व्यतिरेकः। कवि निबद्ध वक्ता की प्रणोक्ति से चित्त वस्तु के द्वारा व्यंग आदि का उदाहरण शिखरणी स्थिति हे सुमुखी इस तोते के बच्चे ने जिस पर्वत पर कितने दिनों तक या तप किया है जो या तुम्हारे ओष के सदृश लाल बिम्बल बिम्ब फल ब्रजक कुंदरू ब्रजवन का स्वाद ले रहा है। अत्र इति यहाँ यह वक्ता कवि कल्प पात्र है। इसकी प्रोडक्ट से सिद्ध इस वस्तु से व्यंग निकलता है कि तुम्हारा अधर अत्यंत पुण्यों से प्राप्त है। जब अधर के तुल्य वस्तु बिंब फल का स्वाद लेने के लिए किसी सुदूर पर्वत पर बहुत काल तक घोर तपस्या करने की आवश्यकता है तो खास पुनः अधर के लिए कितना तप चाहिए इसका तो कहना ही क्या। मगे कोटि संख्यत्वम उपेत्य मदना सुबह वसंते पंचंता तक्ता पंचताशीत योगिनाम अत्र कवि निबद्धत्व त्रि प्रौढ़ोक्ति सिद्धे न काम सराणाम कोटि संख्यत्व प्राप्त्य निखिल योगी मरणे न वस्ना सराणाम पंचस्ता सरान्वी मुच्य योगिनः श्रुत्येर्भ्यु उत्प्रेक्षा अलंकारो यत्यजेत् मल्लिका मुकुले चंदे भाति गुंजन मधुव्रतः प्रयाणे पंच बाणस्य शङ्खमापुरयत्रैव अत्र कवि निबद्ध वक्त्रे प्रणोक्ति सिद्धेन प्रेक्षा अलंकारेण कामस्याय उन्मादकः कालः प्राप्तश्च कथम् भाग्मागिरीमानम् न मुष्टि वस्तु व्यज्यते महिला सहस्रवर्यतुः किय सुह सा अमायन्ति अनुदीर मण रकम्मा अंग तरुवं वी तरुयै अत्रामा अंत इति कवि निबद्ध वक्त्रे प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन काव्यलिंग अलंकारेण ततो नस्तु करणेऽपि तव हृदय न वर्तते इति पुरुषो अलंकारो यज्यते न खलु कवे कवि निबद्धस्यैव रागाद्या विश्रुतया अतः कवि निबद्ध कवि निबद्ध वक्त्रे प्रौढ़ोक्ति कवि प्रौढ़ोक्ति रोधकं सहृदय चमत्कार कारणे पृथक प्रतिपादिता येषु च अलंकृत्य स्थले रूपणोत्प्रेक्ष आदिमात्रस्य प्राधान्यम् सहृदय सहित संविद्यम् न तु रूप्यादिनाम इत्यलंकार कृत्येव मुख्यत्वम् एकः शब्दः सत्ययुच्ये उभयसत्ययुद्भवे व्यंगये एको धर्मने भेदः यथा ही ममुक्त चंद्र रोचिः सपद्य को मदयन्त्यान्तिके मितमित्केतर अभवत् प्रसाद शूरो महोत्सव प्रमदाजनश स चिराय माधव अत्र माधव कृष्ण माधव वसंत उपमा अलंकारो व्यंग्यः एवं च व्यंग्य भेदादेव व्यंग्यकानाम व्यंग्यनाम काव्याम भेदः ततश्चादसद्ध ध्वनिः अविवक्षित वाच्यो अर्थान्तर संक्रमित वाच्यो अन्यतर तिरस्कृत वाच्यश्चेत् द्विध विवक्षितान्य परवाच्यस्तु असंख्य कर्म व्यंग तत्वेन नैकः संलक्ष्य क्रम व्यंगयस्तत्वेन शब्दार्थो वयसत्ति मूलतया पञ्चम दशाष्टादशा भेदो ध्वनियेषु च वाक्य शब्दार्थ सत्य तदन्ये पदवाक्ययोः तत्र अर्थान्तर संक्रमित्त वाच्यो ध्वनिः पदगतो यथा धन्यः स एव तरुणो नयने तस्यैव नयने च युवजन् मोहन्न विद्या भवितेयं तस्य सुमुखे सुमुखी कविनिबद्ध वक्ति प्रौढ़ से व्यंगल अलंकार का उदाहरण सुभगे इति हे सखी वसंत ऋतु में काम के बाणों ने करोड़ों की संख्या प्राप्त करके पश्चिता ब्रैकेट पांच संख्या ब्रैकेट बंद छोड़ दी और वियोगियों को पश्चिता मरण प्राप्त हो गई और वक्ता कवि निबद्ध है उसकी इस प्रौढ़ोक्ति है कि कामदेव के वाणी आजकल पांचवे स्थान में करोड़ों हो गए हैं इसलिए वियोगियों का मरण हुआ इससे बाणों की पंचता मानो वहाँ से हटकर वियोगियों में समा गई हो यह उत्प्रेक्षा अलंकार व्यंग है पंचस्ता का अर्थ पांच संख्या भी होता है और मरण भी होता है कामदेव के बाणों में पंचता संख्या रूप है और वियोगियों के पंचता का अर्थ है मरण ये दोनों एक नहीं है अतः पहले यहाँ न दोनों में श्रेष्ठ मूलक अभेद अध्यवसाय होता है और न उसी के आधार पर अंत में श्रेष्ठ मूलक अतिशयोक्ति के द्वारा मूलक उत्प्रेक्षा अलंकार व्यक्त होता है कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध अलंकार के द्वारा व्यंग अलंकार का उदाहरण मल्लिक जी हे क्रोधशीले चमेली की कली पर गुंजता हुआ भ्रमर ऐसा मालूम होता है मानो कामदेव की विजय यात्रा का विशेष विजय शंख बजा रहा अत्र जी यहाँ कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से उत्प्रेक्षा अलंकार बना है उससे यह वस्तु व्यक्त होती है कि कामोन्माद का समय आ चुका है हे मलिनी तू अब भी मान नहीं छोड़ती है यहाँ कोई यह संदेह करते हैं कि शुक्ल का अग्रभाग पतला होता है और वृत्त का अर्थ लगा हुआ जो भाग मोटा होता है शंख जिस ओर से बजता है उसकी समता इसी मोटे भाग से के साथ हो सकती है परंतु यह भ्रमर का मुख लगना संभव नहीं और यदि भ्रमर बैठ जाए तो गुंजन नहीं होता उड़ने की दशा में ही होता है और उड़ता हुआ भ्रमर शुक्ल के अग्रभाग पर ही रह सकता है इसका शंख के बजने वाले भाग के साथ कोई साम्य नहीं है इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि यह मधुग्रंथ शब्द सा अभिप्राय के है उससे शराब प्रकट मधु प्रकट मधु के नशे में मस्त होना प्रतीत होता है और इसी मस्ती में उल्टा शंख फूकने लगता है एवं उसमें से शब्द निकलने जब उसमें से शब्द निकले तो मुख से ही शब्द करने लगना इत्यादि कामोन्माद की बातें उत्पन्न हो सकती है वस्तुतः यह शंका और समाधान दोनों ही विनोदाभाव है कवि निबद्ध वक्ता प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अलंकार से व्यंग अलंकार का उदाहरण महिला इति महिला सहस्र स्मर इति तव हृदय सुभग आवंति प्रतीति नमनन्य कर्म अंग तनु हम अभी तनु करोति हे सुंदर हजारों स्त्रियों के भरे हुए तुम्हारे हृदय में अवकाश न पाकर वह कामिनी और वो सब काम छोड़कर दिन रात पहले दुर्बल देह को आजकल और भी दुर्बल बना रही है अत्र इति यहाँ अमा अंत प्रकट न समा सकने के कारण प्रकट बंद इस कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध काव्य लिंग अलंकार के द्वारा देह दुर्बल करने पर भी तुम्हारे हृदय में नहीं समाती यह विशेष लोक की अलंकार व्यक्त होता है नखलु इति कवि कल्पित नायक आदि के समान कवि तो स्वयं अनुराग आदि से व्यक्त होता नहीं अतः कवि की प्रौढ़ोक्ति की अपेक्षा कवि निबद्ध वक्ता की प्रौढ़ोक्ति अधिक चमत्कार कारक होती है अतएव उसे पृथक कहा है अन्यथा प्रौढ़ोक्ति सिद्ध अर्थ को एक ही मान लेते हैं रस गंगाधर में पंडित इंद्र ने इस मत का खंडन किया है। देश छेद इन उदाहरणों में जहाँ अलंकार व्यंग है वहाँ रूपण उत्प्रेक्षण व्यतिरेचन आदि की प्रधानता सुनदेवों के अनुभव से सिद्ध है और ये सब रूपक उत्प्रेक्षण व्यतिरेक आदि अलंकारों के निमित्त है। अतः उक्त स्थलों में अलंकारों की ही प्रधानता मानी जाती है, रूप वस्तुओं का नहीं। एक अतिथि उभय सत्य उद्भव ध्वनि का केवल एक ही भेद होता है। भीम अतिथि माधव प्रकट श्री कृष्ण अथवा बसंत प्रकट बसंत कामिनी जन को आनंददायक हुए भीम युक्त इत्यादि विशेषण कृष्ण और वसंत दोनों ही हैं। हिम अर्थात कुहरा तुषार आदि से मुक्त चंद्रमा के समान सुंदर श्री कृष्ण अथवा हिम युक्त चंद्रमा से रमणीय बसंत अर्थात प्यारे के बाल बसंत में चंद्रमा निर्मल हो जाता है। सपद्य कह पद्य लक्ष्मी से युक्त श्री कृष्ण अथवा पद्यों में युक्त बसंत द्वीजों में ब्राह्मणों को आनंद देते हुए श्री कृष्ण अथवा द्वीजों कोकिलादी पक्षियों को आनंद देता हुआ बसंत मीन केतन प्रद्युम्न अथवा काम को पैदा करने वाला सुर प्रकट देवता प्रकट बंध अथवा सुर प्रकट मध्य प्रकट बंध को प्रसन्न करने वाला इति अत्र इति इस पद्य में कृष्ण बसंत के समान है। यह उपमा अलंकार है। यहाँ कुछ पद्य हिमयुक्त मीन केतन आदि बदले जा सकते हैं, इसके पर्यायवाचक पद रख देने पर भी अर्थ नहीं बिगड़ता और कुछ ही सुरा बीज आदि नहीं बदले जा सकते। अतः यहाँ व्यंग अर्थ की प्रतीति में शब्द है और अर्थ दोनों ही कारण है, अतएव यह ध्वनि उभय सत्य उद्भव माना जा सकता है। तद अष्टादश इति अविभक्षित वाक्य के दो भेद कहे हैं, एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य और दूसरा अन्य तिरस्कृत वाच्य। विवक्षित अन्य पर वाच्य के असंलक्ष्य क्रम व्यंग का एक ही भेद होता है, ये तीन हुए। संलक्ष्य क्रम व्यंग में तो शब्द मूलक 12 अर्थ मूलक और एक उभय मूलक इस प्रकार 15 भेद होते हैं, सब मिलकर 18 ध्वनि भेद होते हैं। वाक्य उभय मूलक ध्वनि केवल वाक्य में ही होता है और शेष पद तथा वाक्य दोनों में होते हैं। उनमें अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि का पद उदाहरण जैसे धन्य की वही युवा धन्य होगा और उसी के नेत्र नेत्र होंगे जिसके सामने युवक जनों की मोहनी या तरुणी उपस्थित होगी। यहाँ दूसरा नयन पद भाग्य वक्ता का गुणों से युक्त नेत्रों को लक्षण से बाधित करता है। इसका वर्णन इसी परिच्छेद के आरंभ में अर्थांतर संक्रमित वाच्य के अवसर पर भर आए हैं। इस पद्य के तिरस्कृत विवेचना दशम परिच्छेद में लाटानुप्रास की व्याख्या में देख रहे। अत्र द्वितीय नयन शब्दो भाग्यवतादि गुण विशिष्ट नयन पर भाग्यगतो यथा त्वाम असि वची विदुषाम समवायो वत्र तिष्ठति आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिम अत्र विधेति तत अत्र प्रतिपाद्यस्य समुखीन नत्वा देव लभ्ये प्रतिपाद्यत्वे त्वाम इति पुनर्वचन मन्य व्यापृति विशिष्टम तदर्थ लक्ष्यति एवं वच्यमित्यं नेनैव कर्तरि लब्धे अस्मिन् इति पुनर्वचनम यथा विदुषाम समवाय इत्यनेनैव वक्तुः प्रतिपादने सिद्धे पुनर्वचनम् इति वचनम् उपदिशामिति वचन विशेषरूपम् अर्थलक्षति एतानि च स्वाति स्वयं व्यजयन्ति एतेन मम वचनम् तवाक्यन्तम् इदम् अवश्यमेव कर्तव्यम् इत्यभिप्रायः तदेवम् वाक्यगतो अर्थान्तर संक्रमित वाच्यो ध्वनिः अत्यंत तिरस्कृत वाच्य पदगतो यथा निष्वाक्षान्तः इत्यादि वाक्यगतो यथा उपकृतम् बहुतत्र इत्यादि अन्येषाम् वाक्यगतत्वे उदाहरणम् पदगतत्वम् यथा लवण्यम् तदशोकान्ति तद्रूपम् च स वचः क्रमः तदा सुधास् पदम् बोध धुना तु जरो महान् अत्र लावण्यादिनाम् तादृक् अनुभवैः कगुचरत्वाव्यञ्जनाकानां तदादिशब्दानाम् एव प्राधान्यम् अन्वेषां तु तदुपकारित्यमेवेति तन्मूल एव ध्वनिपदे सह तदुक्तं ध्वनिकृता एकावयौ संश्रेण भूषणेनैव कामिनी पद्यत्येन मुसुकव्यध्वन् इना भाति भारति एवं भावादिश्यं युवं भक्तिमुक्ति क्रीडेकान्त समादेशं तत्परः कस्य नानन्दनिष्यन्दः इदधती समागमः अत्र सदागमसप्तः सन्निहितम् उपनायकम् प्रतिसङ्ख्यास्तार्थ अभिधाय सतः पुरुषा सस्यागमः इत्यवस्तु वनत्ति ननु सदागमः सदागम् ईवेति यत् कथम् उपमाध्वनि सदागमसप्तयोर उपमानोपमेयभावा विवक्षणात् रहस्यसङ्गोपनार्थमेव हि यत्र पत्प्रतिपादनं प्रकरणम् इति पर्यायलोचनेन स सख्यास्त्रात् अभिधानसंस्थानसम्बन्धत्वात् अनन्यासाधारणीभृता अखिलवंशुन्धर राजते कोऽपि जगति स राजा पुरुषोत्तमः अत्र पुरुषोत्तमः पुरुषोत्तम इवेत्य उपमाध्वनिः अनयोः शब्दशक्तिमूलौ संलक्ष्य क्रमभेदौ सायं स्वानम् उपासितम् मलयदेनाङ्गसमालोपितम् यातोऽस्ता मालिम् अम्बर मरणी वस्त्रब्ध मत्रागतिः आश्चर्य तव सौकुमार्यम् अभितः लतान्तासि येनाधुना नृत्रद्वन्द्वम् मेलनप्यतिकरम् शक्नोति ते नासीसुतम् अत्र स्वतः सम्भाविना वस्तुना कृत परपुरुषपरिचय क्लान्तिशिति वस्तु व्यज्यते तथाधुनाम् क्लान्ति अशि न तु पूर्व कदाचित् अपि तदेवं विद्धः कमूतिष्ण इति बोधयतो अधुना पदस्यैव तर पदार्थोत्कर्षादस्यैव पदान्तरापेक्षया वैशिष्ट्यम् तत्प्राप्तिम् महादुःखम् विलीनासे सपातका तच्चिन्ता विपुलाः अक्षीण पुण्यचया तथा चिन्तयन्ति जगत्सुतिम् परब्रह्मस्वरूपिणम् निरुक्षवास्तया मुक्तिम् गतान्या कोपकन्यका युगकमब्रेट् अत्राशेषजयपद प्रभावादनेक जन्मसहस्रभोग्य दुष्कृत् सुकृत्फलरासिता आदाम्य अथव सीततया भगवद्वि विरह दुःखचिन्ता रातयोः प्रत्यायन अमित्यति सयोक्तिद्वय प्रति इति रसेषय पदद्वयौ दुत्या अत्र च व्यञ्जकस्य कविप्रौढोक्तिमनन्तरेणपि सम्भाव स्वतः सम्भावित पश्यन्त्यसङ्ख्यपथनम् त्वद्रेनल वाहिनीम् देवत्रिपथगात्मानम् गोपयत्यङ्ग्रमूर्धनि इदम् मम अत्र पर्यन्त इति कविप्रौढोक्तिसिद्धेन काव्यलिङ्गालङ्कारेण न कीर्त्यन्ते दातारस्तव सदृशा इति व्यतिरेकालङ्कारो असङ्ख्यपदयुत्यः एव मन्ये स्वप्यर्थशक्तिमूलसंलक्ष्य कर्मभेदेषु उदाहरण्यम् तदेवम् ध्वनिः पूर्वोक्तेष्व अष्टादशसु भेदेषु मध्ये शब्दार्थशक्त्युत्थो व्यङ्गो वाक्यम् मात्र भवत्र क अन्ये पुनः सप्तदशः वाक्ये पदे च इति चतुस्त्रिंशत् इति पञ्चत्रिंशत् भेदाः हिन्दि इसी ध्वनि का वाक्यगत उदाहरण त्वाम अपने शिष्य के प्रति किसी की उक्ति है देख मैं तुझसे कहता हूँ यहाँ विद्वान की मंडली उपस्थित है अतः अपनी बुद्धि को स्थिर करके ब्रैकेट खूब समझ बुझ कर ब्रैकेट बंद काम करना अच्छा किसी जिससे बात कहानी है वह सामने ही खड़ा है फिर भी त्वाम कहने से त्वत पद का अर्थ ब्रैकेट वही शिष्य ब्रैकेट बंद अन्यों से व्यापृत ब्रैकेट पृथक ब्रैकेट बंद होकर लक्षित होता है मैं तुझसे कहता हूँ जो तू न तो अनुभवी है और न विशेषज्ञ है। इत्यादि भाव लक्षित होता है, इससे यह स्वयं व्यंग होता है कि तुझे मेरी बात अवश्य माननी चाहिए। इसी प्रकार वाचमी पद के कहने से ही कर्ता का ज्ञान हो सकता है, फिर भी अहम का पर्याय अस्मी कहने से वक्ता के हित चिंताकृत विशेषता लक्षित होती है एवं विदुषाम समवाय जिसे वक्ता का प्रतिपादन सिद्ध है। फिर वाच्यम कहने से उपादसामी उपदेश करता हूँ यह कथन की विशेषता लक्षित होती है। इन सब लक्षणों से लक्षित अर्थों का अतिशय व्यंग है। इससे यह अभिप्राय निकलता है कि उपदेश तेरे लिए अत्यंत हितकर है, अतः तुझे यह अवश्य मानना चाहिए। इस प्रकार यह वाक्यगत अर्थांतर संक्रमित वाक्य ध्वनि का उदाहरण करते हैं, क्योंकि इसमें अनेक पद का लक्षण है। अत्यंतांत तिरस्कृत वाक्य का पद उदाहरण है, जैसे पूर्वोक्त निष्पान संध इत्यादि पद और वाक्यगत जैसे उपकृतम इत्यादि औरों के वाक्यगत उदाहरण आ चुके हैं। असल लक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि का पदगत उदाहरण लावण्यम इति, वह लावण्य, वह कांति, वह रूप और वह पचनावली। उस समय संयोग में तो ये सब अमृत वर्षी थे, परंतु अब प्रगट वियोग में प्रगट पर ओत संतापकारी हो गए हैं। अंत इति, यहाँ लावण्य की अलौकिकता का द्योतक तत् आज शब्द की का ही प्राधान्य है, अन्य शब्द उनके उपकार मात्र है, अतः ध्वनित्व व्यवहार उन्हीं तत् आदि पदों के कारण होता है। इससे यह पदगत ध्वनि इसमें तत् आदि पदों के व्यक्त होता है कि उसकी लावण्य आदि केवल विलक्षण अनुभव हो जाना जा सकता है। शब्द आदि से उसका पर्याय असत्य है। इस अपूर्वता व्यंजना के द्वारा विलक्षण विप्रलम्ब श्रृंगार ध्वनित होता है। यद्यपि यहाँ तत् असो तद सह ये चार पद व्यंजक है और अनेक पद ये व्यंजक होने पर वाक्यगत ध्वनि माना जाता है, पदगत नहीं। तथापि इन सब की प्रकृति तद शब्द एक ही है और अदस शब्द ब्रैकेट असी का प्रकृति भी उसका पर्याय मात्र है, भिन्न रूप से अर्थ का उपस्थापक नहीं। इस अभिप्राय से पदगत ध्वनि बताया है। यदि इसे एक ही पद में बनाना हो तो पद को योग कर लेना चाहिए। लावण्यम तत्तिल असिन्यालोल राजीव चक्षुषः तदाशोधास्पद वध्वना तु ज्वरो महान। जब एक पद के व्यंजक होने में ही अन्य भी उसके उपकारक होते हैं, अकेला वही व्यंजक नहीं होता है, तो फिर उसे पदगत ध्वनि कैसे मानते हो? वह तो अनेक पदों की सहायता चाहने के कारण वाक्यगत ध्वनि होना चाहिए। उत्तर, जहाँ प्रधानता से एक ही पद व्यंजक हो वहाँ पदगत ध्वनि ही मानी जाती है। अन्य पद यदि व्यंजक नहीं केवल उपकारक है तो वाक्य ध्वनि नहीं मानी जाएगी। यही ध्वनि कार ने भी कहा है, एकावयव इति, इसी एक पद के सोच प्रकट प्रकाश से प्रकट बन ध्वनि के द्वारा कवि की संपूर्ण वाणी कुछ प्रकार शोभित होती है, जैसे किसी एक अंग प्रकट नासिका आदि प्रकट बन में पहने हुए भूषण से कामिनी सुशोभित होती है। इससे स्पष्ट है कि अन्य पदों का संविधान होने पर भी एक ही पद व्यंजक होता है। इसी प्रकार भावादिकों में भी पदगत ध्वनि ही उदाहरण जानना चाहिए। शब्द शक्ति मूलक वस्तु ध्वनि का पदगत उदाहरण दिखलाते हैं। भूक्ति इति, लोगों के सामने उपनायक को आया देख उल्टा के छात्र की प्रशंसा के बहाने उसके प्रति अपना हर्ष प्रकाशित किया है। अर्थ, एकांतवास की आज्ञा देने में तत्पर और मुक्ति ब्रैकेट भोग तथा मुक्ति दुख नाशक का देने वाला सदागम सच्छन्न अथवा अच्छे आदमी का आना किसे आनंदित ही नहीं करता है। यहाँ सदागम पद से सन्शोभन आगम शास्त्रम और सतह पुरुषस्य आगमनम इन दो समासों के करके उक्त दोनों अर्थ निकलते हैं। अत्र इति, यहाँ सदागम शब्द अभिधा के द्वारा सच्छन परक अर्थ का बोधन करने के अनंतर पास खड़े हुए उपनायक के प्रति सत्पुरुष समागम रूप अर्थ का व्यंजन होता है। प्रश्न, जैसे पूर्वोक्त दुर्ग लंघित विग्रह इत्यादि पद में वाच्य और व्यंग अर्थों का उपमानोपमेय भाव भी व्यंग माना जाता है, वैसे यहाँ भी सदागम पद के वाच्य और व्यंग अर्थों में उपमानोपमेय भाव को व्यंग क्यों नहीं मानते? यहाँ भी तो सदागम प्रकट सत्यक्षण प्रकट बंध, सदागम प्रकट सत्यक्षण प्रकट बंध इस तरह होता है, इस अर्थ में उपमा प्रतीत होती है। यहाँ सदागम शब्द के इन दोनों अर्थों में उपमानोपमेय भाव की विवक्षा नहीं है। द्विअर्थक पद तो केवल रहस्य के छुपाने के लिए बोले जाते हैं। प्रकरणादि की आलोचना के बाद सत्यान का कथन प्रकृति में एकदम असंबद्ध हो गया है, केवल दूसरा अर्थ ही उपयुक्त होता है। दुर्ग लंघित इत्यादि पद्य में जैसे शिव की उपमा देने के प्रकृति राजा का महत्व बोधन अभिषेक है, तो वैसे यहाँ कुछ नहीं वाच्य अर्थ सत्यान प्रकट बंद तो यहाँ जरा देर के लिए धोखा सा देकर उड़ जाता है, असल मतलब उससे कुछ नहीं है। शब्द शक्ति मूलक पदगत अलंकार ध्वनि का उदाहरण देते हैं, अनन्य अलौकिक बुद्धि से युक्त संपूर्ण पृथ्वी का धारण करने वाला और कोई पुरुषोत्तम राजा विराजित है। यहाँ पुरुषोत्तम नामक राजा पुरुषोत्तम प्रकट विष्णु प्रकट बंद के सदृश है, यहाँ उपमा ध्वनि होती है। ये दोनों प्रकट भूक्ति अनन्य प्रकट बंद शब्द शक्ति मूलक संलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि के भेद है। अर्थ शक्ति मूलक ध्वनियों के पदगत उदाहरण देते हैं, स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण सायं इत्यादि की थी। तूने अभी सायं काल स्नान किया है, शरीर में शीतल चंदन का लेप किया है, सूर्य अस्त हो गया है, प्रकट धूप भी नहीं है प्रकट बंद और आराम से प्रकट धीरे धीरे प्रकट बंद, तो तू यहाँ आई है, इस समय तेरी सुकुमारता अद्भुत है, जो तू इतनी क्लांत प्रकट मुरझाई सी प्रकट बंद हो गई है और तेरे से निर्निभेश नयन अति चंचल हो रहा है। यहाँ अर्थ स्वतः संभवी है, उससे यह वस्तु व्यंजित होती है कि तू पर पुरुष के संग से क्लांत हुई है, वह भी और पदों की अपेक्षा साध अधुना पद के अर्थ से अति स्पष्ट रूप से प्रकाशित होती है, अतः यहाँ पदगत ध्वनि है, इसे इस समय तेरी सुकुमारता अद्भुत है जो पहले तो कभी नहीं दिख पड़ी, परंतु इस समय स्नान करने के बाद चंदन लगा के ठंडक में धीरे धीरे जरा दूर आने में ही तू अत्यंत थक गई और पसीना पसीना हो गई। सुकुमारता एक स्वाभाविक धर्म है जो सदा एक सा रहता है, परंतु जो सुकुमारता सदा न रहकर किसी खास समय में ही एकदम उबल पड़ा करे वह अद्भुत अवश्य है। इस प्रकार का अर्थ बोधन करता हुआ अधुना पद प्रधानतया व्यंजक है, यहाँ अधुना पद का सौ कुमार्य के साथ अन्वय करने से व्यंग की प्रतीति बहुत अच्छी होती है। अधुना तो सौ कुमार्य नाश्चर्य न पूर्व कदाचित कुमार्य दृष्टम। श्री तर्कवागीश जी ने इस पद की व्याख्या इस प्रकार की है, सत्यम इत्यादि अधुना पदार्थ प्रति संशोधनेन सायंतन स्नानस्य निमित्तांतरानुसंधान प्रतिबंधाद विलंबितमेव पर पुरुष परिचयम प्रत्यायति एवं मलयजेर इत्यादि पर पुरुष संभोग चिन्ह गोपनम त्याद इति पर पुरुषम संभोग गति प्रबंध प्रकाश अभावनम विस्तृति विस्तृतिम इत्यादि तदेशे तत्कालिकनाय सत्वात् अभावादमधुनाम पदार्थ प्रतिसंघाने नैव प्रत्यायति अत्रोपहास एवं महावाक्य व्यंगः। व्याख्या से अलंकार शास्त्र की अज्ञता और तत्वार्थ समझने की अयोग्यता प्रकट होती है। आपका कहना है कि पर पुरुष संघ के सिवा सायंकाल के स्नान का और कोई कारण नहीं है, आप समझते हैं कि न तो प्रकृत पद्य में किसी ग्रहण पड़ने का वर्णन है और न किसी महापर्व की चर्चा है, फिर यह सायंकाल नहाई क्यों? बस इसी से मालूम होता है कि इसने पर पुरुष गमन किया है। अब आपको यह कौन बताए कि यह गर्मी की ऋतु का वर्णन है या तो साचल मलय इत्यादि उसके स्पष्ट प्रमाण है। शायद आपने गर्मियों में किसी को सायंकाल नहाते नहीं देखा और चंदन क्यों लगाया इसका उत्तर सुनिए। एवं मलय जेन इत्यादि भरपुर संभोग चिन्ह गोपनम चंदन थाप कर रक्षक आदि पर पुरुष के संभोग चिन्ह छिपाए हैं। सूर्यास्त के वर्णन का तात्पर्य आप बताते हैं कि पर पुरुष संभोग के प्रतिबंधक प्रकाश का अभाव है। का भाव आप समझते हैं कि अब वहाँ पर पुरुष है भी नहीं जो कोई पकड़ ले। अतः नायिका निष्प्रभ यानी निश्चिंत है। यदि यह मान ली ले कि तर्कवागीश ने इसे इतना धर्म शास्त्र पढ़ा दिया है कि पर पुरुष गमन करके तुरंत नहाने दौड़ जाती है और इतनी बुद्धिमती भी है कि नक्षत्र आदि के छिपाने के लिए चंदन थोप लेती है, तो फिर अब यह इतनी क्लांत इतनी थकी और इतनी घबराई हुई क्यों है, पसीना पसीना क्यों हो रही है। यदि पर पुरुष संघ के अनंतर स्नान और चंदन लेप भी कर चुकी है तो फिर क्लांति और नेत्र चंचल्य का क्या कारण है। यदि पर पुरुष को भगा के अविस्तृत अर्थात निश्चिंत हो चुकी है तो फिर इसके नेत्र अति चंचल क्यों है। आपने इस पद्य में उपहास को व्यंग बताया है पर आपको यह मालूम नहीं कि इस कथन के आप ही का उपासक हो गया है। वस्तुतः प्रकृत पद्य में सूर्यास्त का ठंडा समय सायन स्नान चंदन लेप आदि शीतल कारणों के अनंतर कलम और नेत्र चंचल्य देखने से ही व्यंग अर्थ पर पुरुष संघ की प्रतीति होती है। संभोग के अनंतर स्नान करने में तात्पर्य नहीं है। स्वतः संभवी अर्थ में अलंकार ध्वनि का पदगत उदाहरण देते हैं। तद प्राप्त इति श्री कृष्ण जी की प्राप्ति से उत्पन्न महादुख के भोगने से जिसके अवशेष प्रकट सबके सब प्रकट बंद पातक विनष्ट हो गए हैं का स्मरण करने से उत्पन्न हुए अत्यंत आनंद के उपभोग से जिसके पुरियों का क्षय समूह विनष्ट हो गया है वह कोई गोप कन्या जगत के जनक परम ब्रह्म के स्वरूप श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई निश्वास प्रकट श्वास रहित प्रकट बंद होकर मुक्ति को प्राप्त हो गई है। मुक्त होने के लिए पाप तथा पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों को नाश होना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब समाधि भावना के द्वारा परम ब्रह्म का ध्यान किया जाए। बिना निधि ध्यान आदि के मुक्ति नहीं हो सकती। यही योग शास्त्र की मर्यादा है। वे ही सब बातें उक्त दोनों पद्यों में गोप कन्या में दिखाई है। यह किसी ऐसी गोपी का वर्णन है जो मुरली मनोहर की मुरली ध्वनि सुन के उनके दर्शनों के लिए छटपटा रही है पर घर के बड़े बूढ़े उसे जाने नहीं देते। जब वह कृष्णचंद्र के वियोग का ध्यान करती है तभी दुखों के सैकड़ों पहाड़ उसके हृदय पर टूट पड़ते हैं और जब भगवान के मिलने का स्मरण करती है तो आनंद का समुद्र उबर जाता है। इसी सोच विचार में भूत बनी बनी बैठी है। स्वास्थ्य का वेग धीमा पड़ गया और संसार से छूट गई। मुक्ति के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है वे सब इसमें बताए हैं। तद प्राप्ति से सब पापों का नाश तद चिंता से सब पुण्यों का क्षय चिंतयंती से श्री कृष्ण रूप पर ब्रह्म का ध्यान में निमग्नता और निरुक्श्वास से समाधि भावना की पराकाष्ठा की सूचन किया है। अत्र इति इस उदाहरण में अशेष और क्षय इन दोनों पदों से दो अतिशयोक्ति अलंकार प्रतीत होते हैं। भगवान के विरह का दुख और उनके स्मरण का आह्लाद इन दोनों को अनेक जन्मों जन्म भोग पाप पुण्यों के फल प्रकट सुख दुखों प्रकट के साथ अभिन्न रूप से बोध किया गया है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के विरह में उत्पन्न महादुखों से उसके अशेष प्रकट सबके सब प्रकट पातक नष्ट हो गए। इस कथन से अशेष पद से यह व्यक्त होता है कि अब कोई पातक शेष नहीं है। पातकों का फल हजारों प्रकार की योनियों में पड़कर कष्ट भोगना था और जो बिना भोगे छूट भी नहीं सकते थे वे सबके सब आज विरह के महादुख से विलीन होकर वह बह गए हैं। यह विरह महादुख उन्हीं सब पापों का इकट्ठा फल है और चिंता जन्य आहत इसी प्रकार पुण्य तथा परिणाम है। यह अनेक जन्म भोग पाप फल के साथ विरह दुख का अभेद अध्यवसान करने से पहली और अनेक जन्मों में भोग्य पुण्य फल सुख के साथ चिंता जन्य आहत का अभेद अध्यवसान करने से दूसरी अतिशयोक्ति व्यक्त होती है। अशेष और क्षय पद इनके प्रधान द्योतक है। अतः यह पदगत अलंकार ध्वनि है। अत्र इति यह व्यंजक ब्रैकेट वाक्यांश ब्रैकेट बंद कवि की प्रवृत्ति के बिना भी हो सकता है। इस प्रकार की दशा लोक सिद्ध है, अतः यह व्यंजक अर्थ स्वतः संभवी है। पश्यंत संख्या इति हे राजन, तुम्हारे दान कल संकल्पों के जल से उत्पन्न नदी को असंख्य मार्गों से बहती देख कर त्रिपथ गमा प्रकट केवल तीन मार्गों से चलने वाले प्रकट बंद गंगा अपने को शिव जी के सिर में छिपाती है और वह केवल त्रिपथ का है और आपकी दान जल नदी असंख्य पथ का है, अतः इससे वह लज्जित होती है। अत्र इति एक नदी दूसरी नदी को देख कर लज्जित हो और फिर अपने को कहीं छिपाए यह बात लोक सिद्ध नहीं है, अतः यह अर्थ कभी प्रणव की सिद्ध ही है। पश्चिम की यह हेतुर्गर्भ विशेषण है, देखती हुई अर्थात देखने के कारण प्रकट लज्जित हुई प्रकट मन छिपती है। इसी पदार्थ गत हेतु का के कारण कभी प्रणव की सिद्ध काव्यलिंग अलंकार से आपके समान कोई दाता नहीं है। यह व्यतिरेक अलंकार असंख्य पद से जंग है, जहाँ किसी पद अथवा वाक्य के अर्थ दूसरे का कारण प्रतीत होता हो वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है, जहाँ उपमेय उपमान से अधिक हो वहाँ व्यतिरेक होता है। इसी प्रकार और भी असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि के अर्थ शक्ति मूलक उदाहरण जानना चाहिए। तदेवम इति इस प्रकार ध्वनि के 18 भेद हुए। दो प्रकार की लक्षण मूलक ध्वनि, एक अर्थांतर संक्रमित वाक्य, दूसरी अत्यंत तिरस्कृत वाक्य। अभिधा मूलक ध्वनि में असंलक्ष्य क्रम व्यंग का केवल एक भेद और संलक्ष्य क्रम व्यंग के शब्द दो, शब्द मूलक दो भेद, अर्थ मूलक 12 भेद और उभय मूलक एक भेद। इस प्रकार सब मिलकर 18 भेद हुए। इनमें से उभय शक्त उद्भव ध्वनि केवल वाक्य में ही होता है, अतः एक ही प्रकार का होता है। शेष 17 पद और वाक्य दोनों में होने के कारण 34 तरह के होते हैं, अतः सब मिलकर 35 भेद हुए।
श्लोक नंबर 10 प्रबंधे अभी मतो धीरैर अर्थ शक्य उद्भव ध्वनि। व्याख्या संस्कृत में प्रबंधे महावाक्ये अनंतर उक्त द्वादश भेदो अर्थ चतुर्थ यथा महाभारते वृद्ध गोमात्र संयुक्त संवादे अलम स्थित्वा श्मशाने यस्मिन् वृद्ध गोमा संकुले कलाकल कंकाल वहलेतो घोरे सर्व पाणी प्राणी भयंकरे नचेह जीवितः कश्चित् काल धर्म उपागतः प्रियो वा यदि वा द्वेषः प्राणिनाम गतेरिद्धि इति दिवा प्रभवतो वृद्धस्य श्मशाने अमृतम् बालम् उपादाय तिष्ठताम् तम् परित्यज्य राम निष्ठम आदित्यो अयम् स्थितो मोहास्नेहम् कुरुतः साम्प्रतम् बहु विघ्नो मुहूर्तो वयम् जीवेदपि कदाचन अमुम् कनकवर्णभम् बालम् प्राप्त यौवनम् गृहवाक्यात् कथम् मूढास्तत्यथम् मवित्संहिता इति निशिसमर्थनस्य गोमायोर्दिवसे परित्यागो अनभिलाषिते इति वाक्यसमूहे न प्रत्यते। अत्र स्वतः संभवी व्यञ्जकः एवमन्यस्येकादश भेदेषु उदाहर्यम् एवं वाच्यार्थस्य व्यञ्जकत्वे उदाहृतम् लाक्षार्थस्य यथा निःस्यस्य चिन्तचन्दरम् इत्यादि व्यङ्ग्यार्थस्य यथा वणि चल इत्यादि अनयोः स्वतः संभविनोर्लक्ष्यव्यङ्ग्यार्थौ व्यञ्जकौ एवमन्यस्येकादशभेदेषु उदाहर्यम् पदान् सवर्णरचनाप्रबन्धेष्व स्फुटक्रमः अंशलक्ष्यक्रमव्यङ्गो ध्वनिस्तत्र पदांश प्रकृति प्रत्ययोपसर्ग निपाताः आदिभेदाः अनेकविधः यथा चलापांगा दृश्यं स्पृशसि बहुशो बेपथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वरसि मृदु कर्णं तिकचरः करं व्याधुन् त्वया दिवसि रति सर्वस्य मधुरं वयं तत्त्वान्वे वेषान् मधुकर हस्ताश्वं खलु कृतिः अत्र हताः इति न पुनः दुःखं प्राप्तवन्त इति हन प्रकृते मोहरंगुल संब्रिता धती से धाक्षर विकल भावाभिरामं मुखं सं विवर्ति पक्षलक्ष्यक कथमप्युत्रमितं नचुंबितं तु अत्र तु इति निपातस्यानु तापव्यञ्जकत्वं ञंकारो ह्यमेव मे यतरः इत्यादौ आरयः इति बहुवचनस्य तापः इत्येकवचनस्य अत्रैव इति सर्वनाम्नः निहन्तीति जीवतीति च तिङ्ग अहो इत्यस्य ग्रामत्य इति करुपत्तत्तस्य विलुण्ठन इति व्योत्सर्गस्य भुजैः इति बहुवचनस्य व्यञ्जकत्वम् आहारे विरतिः समस्तविश्रय ग्रामे निवृत्तिः परा न साग्रे नयनं तदेत परं यञ्चैकतानं मनः मौनं चेदमिदं च शून्यमधुना यतश्चि आभाजिते तद्भ्रुयाः सखी योगिनी किमसि भोः किवां वियोगिन्यसि अत्र तु आहार इति विषयसम्प्रक्तम्य समस्त इति परा इति च विशेषणस्य मौनं चेद इदम् इति प्रत्ययपरामर्शिनः सर्वनाम्नः अभात् इत्युपसर्गस्य सखि इति प्रणयस्य मारणयस्य असिभोः इति सोपहासोत्प्रासस्य किं वा इत्युत्तरपक्षाख्य सूचकस्य वा शब्दस्य असि इति वर्तमानोपदेशस्य तद्विषयव्यञ्जकत्व च हृदय संवेद्यम् वर्णरचना योरुत्ताह अरिष्यति प्रबन्धे यथा महाभारते शान्तः रामायणे करुणः माल्तिमाधव रत्नबाल्यादयौ श्रृङ्गारः एवमन्त्यर्थ निबन्धे अप इति पीछे कहा हुआ बारह प्रकार का अर्थ सत्य उद्भव ध्वनि प्रबंध में भी होता है जहाँ जैसे महाभारत के वृद्ध गोमायु संवाद में महाभारत शांति पर्व के 153वें अध्याय में वृद्ध गोमायु संवाद है। युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा कि क्या कोई मर कर भी जीवित हुआ है, तब उन्होंने यह प्राचीन कथा सुनाई और नैमिष प्रकट नैमिषारण्य प्रकट वन में किसी ब्राह्मण का दुखा लब्ध सुत मर गया, उसे लेकर रोते कल्पते लोग शमशान पहुँचे। उनका शब्द सुनकर कोई वृद्ध वहाँ पहुँचा। तेषाम् अरुदित शब्देन वृद्धोऽप्यत्यय वचो अप्रवित एकात्मदिमं लोके त्वत्यागच्छत् तमाचिरम् अलम् स्थित्वा इत्यादिदश श्लोकों में वृद्ध ने ऐसा उपदेश दिया कि लोग उस बच्चे को छोड़कर चल दिए। उसी समय एक काला श्रृगाल बिल से निकल कर बोला कि मनुष्य जाति बड़ी निर्दय और स्नेह शून्य होती है। ध्वांक्ष पक्ष सवर्णस्तु बिला नित्य श्रित्यः जम्बुकः गच्छमानान् श्मतानाः निगृहाः कर्मानुषाः आदित्यो अयम् स्थितः इत्यादि 14 पद्यों में जम्बुक ने उसे ऐसी फटकार बताई कि सब लौट पड़े। फिर वृद्ध ने ऐसा वृदांत बघाला कि सब चल दिए। अनंत फिर जम्बुक राज ने ऐसी लानत मलानत कि सब लौट पड़े। इसी प्रकार कई बार चले और कई बार लौटे। वृद्ध चाहता था कि सब लोग बचे छोड़कर चले जाएं और मेरा काम बने। श्रीकांत समझता था कि अभी थोड़ा दिन है, यदि ये लोग चले गए तो किस किस पर आ टूटेंगे और मैं मुंह ताकता जाऊंगा। यदि और एक कुछ देर टिक रहे तो रात्रि में वृद्धराज को कुछ न चलेगी और मैं स्वच्छ भोजन करूंगा। अंत में शिव जी वहाँ प्रकट हुए, उन्होंने बच्चे को दिला दिया और वृद्ध गोमायु को भी क्षुधा शांति का प्रदान दिया। जीवितम स्म कुमाराय प्रादाय वर्ष शतानि वै तथा गोमायु वृद्धाभ्याम प्रादत क्षुधे नाशनम अलम स्थित्वा इत्यादि वृद्ध का वचन है। अर्थ वृद्ध की दर्द आदि अभद्र प्राणियों से विकट और चारों ओर बड़े कंकालों अस्थि पंजरों से भीषण सब प्राणियों को भयदायक श्मशान में बैठने का कुछ काम नहीं। आज तक कोई भी काल के कलान काल में पढ़कर जीता नहीं बचा है, चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, प्राणियों की यह दशा अनिवार्य है। एक दिन यह गति सभी को प्राप्त होती है। इति दिवा मृत बालक को लेकर बैठे हुए आदमियों का वहाँ से चला जाना केवल दिन में समर्थ को अभिलषित है। गीदड़ की उक्ति आदित्यो अयम अरे मूर्खों अभी सुनिश्चित है, उसको प्रेम करो क्या मुहूर्त बहुत विघ्नों से युक्त है, शायद लड़का जी ही जाए। या सुवर्ण के समान सुंदर गोरा गोरा बालक जिसके यौवन का विकास भी होने नहीं पाया है, उसे केवल गिद्ध के कहने से बेखट के कैसे छोड़ दोगे। ये वचन रात्रि में समर्थ गिद्ध के हैं, उसे उनका छोड़कर चला जाना अभिष्ट नहीं है। यह बात इन वाक्यों के समुदाय प्रबंध से प्रतीत होता है। यह व्यंजक वाक्यार्थ स्वतः संभवी है। इसी प्रकार और 11 भेदों से भी उदाहरण जानना, ये सब उदाहरण वाक्यार्थ की व्यंजकता में दिए है। लव्यार्थ की व्यंजकता का उदाहरण विशेष इत्यादि और व्यंगार्थ की व्यंजकता का पूर्वोक्त परिचय इत्यादि जानना चाहिए। इन दोनों में स्वतः संभवी वाक्यार्थों के लक्ष्य और व्यंग अर्थ व्यंजक है। इसी प्रकार और 11 भेदों के उदाहरण जानने, अन्योर इति अनयोर उदाहरण योर मध्य स्वतः संभविनोर वाक्यार्थ ययौ लक्ष्यार्थ व्यंगर्थायौ तौ व्यंजकौ इत्यर्थः। निशेष चिंतन और उमणील इत्यादि पद्यों में वाच्य अर्थ स्वतः संभवी है। पहले में स्वतः संभवी वाच्य अर्थ का लक्ष्य अर्थ व्यंजक है और दूसरे में स्वतः संभवी वाच्य अर्थ का व्यंजक अर्थ व्यंजक है। इनका वर्णन हो चुका है अथवा स्वतः संभाविनो इस षष्ठी का संबंध व्यंगयोह के साथ है। स्वतः संभविनो व्यंजार्थयौ व्यंजकौ यो लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थौ। पहले पद्य में व्यंग है रंतुम और दूसरे में संकेत स्थानत्व है, ये दोनों स्वतः संभवी है। इनमें से पहले का व्यंजक लक्ष्यार्थ है और दूसरे का व्यंजक व्यंग्यार्थ है। वस्तुतः ये दोनों अर्थ असंगत है। स्वतः संभवित्व आदि का विचार केवल व्यंजक अर्थ में किया जाता है अन्यत्र नहीं। पूर्वोक्त दोनों पद्यों में जब वाच्य अर्थ व्यंजक ही नहीं है तो उसके विषय में स्वतः संभवी आदि की गवेषणा करना ही व्यर्थ है। इसी प्रकार पूर्वोक्त पद्यों में चरम व्यंग्यों के विषय में भी स्वतः संभावित्व आदि का अनुसंधान व्यर्थ है। यह बात केवल व्यंजक अर्थ में देखना चाहिए। अतः प्रथम पद्य में लक्ष्यार्थ ब्रैकेट अंतिम ब्रैकेट बंद और द्वितीय पद्य में व्यंग अर्थ ब्रैकेट व्यंजनत्व ब्रैकेट बंद में जो कि संकेत स्थानत्व का व्यंजक है, यह देखना चाहिए कि स्वतः संभवी और अथवा कवि कल्पित एवं च मूल ग्रंथ में षष्ठन पाठ असंगत है, प्रथमांत हो पाठ होना चाहिए। स्वतः संभवी नौ लक्ष्यार्थ व्यंग्यार्थ व्यंजक ऐसा पाठ होना चाहिए। प्रश्न, जब वाच्य लक्ष्य और व्यंग ये तीनों प्रकार के अर्थ व्यंजक होते हैं तब वस्तु वा अलंकृत वापी इत्यादि कारिका में जो 12 भेद गिनाए गए हैं उनके स्थान में 36 त्रिगुणित भेद कहने चाहिए। उत्तर, प्राचीनों की प्रथा के अनुसार अर्थत्वेन रूपेण तीनों प्रकार के आए अर्थों को एक ही मानकर केवल 12 भेद गिनाए हैं, अतः कोई दोष नहीं है। प्रश्न, जिस प्रकार व्यंजक अर्थ को स्वतः सिद्ध और प्रणक्त सिद्ध माना है उसी प्रकार व्यंग अर्थ को भी मानना चाहिए। जैसे व्यंग और व्यंजक दोनों ही वस्तु रूप है और अकाल अलंकार रूप माने जाते हैं, वैसे ही इन दोनों को स्वतः और प्रणक्त सिद्ध भी मानना चाहिए। व्यंजक अर्थ को 6 प्रकार का मानना और व्यंग को केवल 2 प्रकार का मानना वस्तु रूप और अलंकार रूप मानना उचित नहीं। उत्तर, अर्थ मूलक ध्वनि के जो 12 भेद वस्तु व इत्यादि कारिका में कहे हैं वे प्राचीन आचार्यों की परंपरा के अनुसार जानना, इस प्रश्न के अनुसार विवेचना करने और वाच्य लक्ष्य व्यंग अर्थों को पृथक पृथक मानने पर ध्वनि के भेदों में अधिकता अवश्य होनी चाहिए। पदांश इति अस्फुट क्रम अर्थात असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि पदांश अर्थात प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग निपात तथा वर्ण और रचना आदि में रहने से अनेक प्रकार की होती है। जैसे चल अपांगम इति शकुंतला के रूप लवणे पर मोहित किंतु उसकी विशेष दशा ब्रैकेट ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि ब्रैकेट बंद से अपरिचित
दुष्यंत की शकुंतला के मुखमंडल पर घूम घूम कर गूंजते हुए भ्रमर के प्रति उगती है। अर्थ है भ्रमर, तू चंचल कटाक्षों से युक्त कंपित दृष्टि को बारंबार स्पर्श करता है, कान के पास जाकर मधुर गुंजार के मानो कान में धीरे से रहस्य निवेदन करता है। उड़ाने के लिए इधर उधर हाथ झटकती हुई इस तरुणी के रति सर्वस्व अधरामृत का बार बार पान कर रहा है। हे मधुकर, वस्तुतः तू ही चतुर है, हम तो तत्व अन्वेषण ब्रैकेट अर्थात यह ब्राह्मणी है या क्षत्रिय इसकी खोज ब्रैकेट बंद ही में मरे। यह दुख प्राप्तवंत के स्थान पर हंता ब्रैकेट मरे ब्रैकेट बंद कहे में कहने में दुख अतिशय व्यंग है। इसका व्यंजक हन धातु प्रकृति मात्र है। मुहूर इति गौतमी के साथ शकुंतला के चले जाने पर अनुतम दुष्यंत की उक्ति है। बार बार उंगलियों में छिपाए हुए अधरोष्ठ से सुशोभित निषेध के अक्षर से व्याकुल अतएव रमणीय अपने कंधे की ओर घुमाया हुआ उस सुंदर नयनी का मुख मैंने जैसे तैसे ऊपर उठाया पर चुंबन तो न कर पाया। यहाँ तू ब्रैकेट तू इस निपात में अनुपात व्यक्त होता है। न्यकारः इत्यादि पद में अरयः इत्यादि में बहुवचन आदि व्यंजक है। रावण के एक भी शत्रु का होना अनुचित है, बहुत शत्रु होना तो अत्यंत अनुचित है। यहाँ अनेक अरियत संबंध अनुचित व्यंग है, उससे क्रोध व्यक्त होता है। श्री तर्क वागीश जी ने यहाँ पर भी निर्वेद की कथा कही है। हम इसकी आलोचना पहले परिच्छेद में कर आए हैं। तापस के एक वचन में शत्रुगत क्षुद्रता प्रतीत होती है। तापस शब्द से केवल काय कष्ट रूप तपस्या के युक्त होना बोधित होता है, उससे पुरुषार्थ शून्य प्रतीत होती है। अण प्रत्यय से अलौकिक तप सिद्धि का अभाव प्रतीत होता है। अत्रैव यहाँ सर्वनाम इदम पदम सामने स्थित अपने राज्य की भूमि की ओर इशारा करते कर रहा है। इससे भी अनुचित नेतन के द्वारा क्रोध व्यक्त होता है। वह क्षुद्र शत्रु भी यही मेरे राज्य में ही रहकर मेरा अपकार कर रहा है, यह अत्यंत अनुचित है। निहंती और युवति के तीन प्रत्यय उन क्रियाओं की वर्तमानता बोधन करते हैं। उससे रावण के जीवन काल में ही उसके प्रिय राक्षसों का हनन हो रहा है।
यह बात असंभवनीयता की द्योतक है, अहो अव्यय आश्चर्य का द्योतक है। ग्राम टीका में क्षुद्रता का बोधक क प्रत्यय रावण के महत्व का सूचक है। बिलकुंठन में भी उपसर्ग लूट की स्वच्छंदता का बोधक है। भुजई का बहुवचन अनादर का ज्ञापक होता है। इस प्रकार यहाँ पदांशों में व्यंजकता है। दूसरा उदाहरण आहारे इति किसी विरहिणी के प्रति नर्म सखी की उक्ति है। आहार ब्रैकेट भोजन ब्रैकेट बंद में तुझे अरुचि हो गई है, तेरा मन संपूर्ण विषयों से एकदम हट गया है, दृष्टि नाक के अग्रभाग में लगी रहती है। सबसे बढ़कर यह मन ही एकाग्रता है और यह जो जब सब संसार तुझे इस समय शून्य सा भासित हो रहा है। सो है सखी बात तो सही, तू योगिनी योग साधन करने वाली है अथवा योगिनी है। इस पद्य में आहार्य पद्य से विषय सप्तमी समस्त और परा ये दोनों विशेषण मौनम चेदम यहाँ पर उसी समय के प्रत्यय अनुभव की ओर इशारा करने वाला सर्वनाम इदम पद आभागी यहाँ अंग उपसर्ग प्रेम का स्मारक सखी का संबोधन असी भो यह उपहास के सहित उत्प्रास किम वा यहाँ पर दूसरे पक्ष ब्रैकेट वियोगिनी तो ब्रैकेट बंद को पक्ष करने वाला वा शब्द और असी इस पद का वर्तमान काल इस सब का अपने अपने विषयों को ध्वनित करना स्वरदेव से ही ज्ञातव्य है। तात्पर्य आहारे इस विषय सप्तमी से संपूर्ण आहार विषय है, विराट प्रतीत होता है। योगिनी केवल उन आहारों से बचती है जो मन में विकार पैदा करते हैं। शरीर रक्षा के लिए सात्विक आहार तो वह करती उन आहारों से बचती है जो मन में विकार पैदा करते हैं। शरीर रक्षा के लिए सात्विक आहार तो वह करती ही है, परंतु तू तो आहार मात्र से विरक्त है। यह भाव इस विषय सप्तमी से ध्वनित होती है। समस्त पद से यह प्रतीत होता है कि योगिनी की धर्म उपयोगी विषयों ब्रैकेट गंगा स्नान आदि ब्रैकेट से निवृत्ति नहीं होती, परंतु
तेरा मन तो सभी भले बुरे विषयों से हट गया है। योगिनी की विषयों से अत्यंत निवृत्ति होती नहीं। शरीर यात्रा के निमित्त उसे बहुत से काम करने पड़ते हैं, परंतु तेरी तो परा प्रकट अत्यंत प्रकट बंद निवृत्ति हो गई है। योगिनी केवल ध्यान के समय नाक के आगे दृष्टि लगाती है, परंतु तेरी तो तदेतत यह समय है नागास्त्र नासाग्र दृष्टि रहती है, अपर जिसमें प्रेमी के सिवा प्रकट ब्रह्म अथवा प्रियतम के अतिरिक्त प्रकट बंद पर प्रकट अन्य प्रकट बंद कोई नहीं भाषित होता। ऐसा एक तन प्रकट बंद एक प्रकट एकाग्र प्रकट बंद एक और नहीं लगा हुआ है, निरुद्ध नहीं, यह तेरा मन है। यह बात सदैव तत् परम से स्फुट होती है। इधर यह प्रत्यक्ष अनुभूय मन तेरा विलक्षण मौन या भाव सर्वनाम से व्यक्त होता है। योगिनी को ब्रह्म ज्ञान के कारण संसार शून्य प्रतिभाषित होता है, परंतु तुझे तो अभाषित प्रकट भाषित नहीं प्रकटबंध होता है। ब्रह्म ज्ञान के बिना वास्तविक शून्यता का ज्ञान न होने पर भी सुना सा प्रतीत होता है। सखी कहने से अंतरंगता प्रतीत होती है, इससे यह व्यक्त होता है कि मुझे तेरा सब हाल मालूम होता है। तेरा यह प्रणय प्रेम मुझसे छिपा नहीं है, अतएव असी भो इस संबोधन से उपहास सूचित होता है और उत्तर पक्ष प्रकट वियोग दशा की ओर अधिक इशारा करने वाला किम वा पद से उसकी विरहावस्था प्रतीत होता है। वर्ण रचन यो रति वर्ण और रचना के उदाहरण अष्टम नवम परिच्छेदों में आएगा। प्रबंधे इति प्रबंध में जैसे महाभारत में शांत रामायण में करुण और मालती माधव रत्नावली आदि में श्रृंगार रस समस्त प्रबंध का व्यंग है, तदेव इसी प्रकार इस ध्वनि उत्तम काव्य के 91 भेद होते हैं। 35 भेद पहले गिन चुके हैं। अर्थ सत्य उद्भव ध्वनि प्रबंध में भी होता है, अतः उसे 12 भेद और बढ़े। एवं असंलक्ष्य कर्म व्यंग के पदांश वर्ण रचना और प्रबंध इन चारों से व्यक्त होने के कारण 4 भेद और बढ़े। इस प्रकार 35, 12 और 4 मिलकर 51 भेद होते हैं। अविवक्षित वाच्य नामक लक्षणामूलक ध्वनि के 2 होते हैं और एक अर्थांतर अर्थांतर संक्रमित और दूसरा अर्थांतर तिरस्कृत वाच्य पदगत और वाक्यगत दोनों के कारण इन दोनों के 4 भेद होते हैं। अविधामूलक ध्वनि भी 2 प्रकार की होती है, एक असंलक्ष्य क्रम व्यंग और दूसरा संलक्ष्य क्रम व्यंग रस भाव आदि इसी भेद के अंतर्गत होते हैं। यह पद पदांश वाक्य वर्ण रचना और प्रबंध में रहता है, अतः इसके 6 भेद होते हैं। संलक्ष क्रम व्यंग ध्वनि के 3 भेद माने जाते हैं, शब्द शक्ति प्रभाव अर्थ शक्ति प्रभाव और उभय शक्ति प्रभाव। इनमें से प्रथम प्रकट शक्ति शब्द शक्ति प्रभाव प्रकट बंद 2 प्रकार का होता है, नंबर 1 वस्तु रूप और नंबर 2 अलंकार रूप। पदगत और वाक्यगत होने से इन दोनों के 4 भेद होते हैं। अर्थ शक्ति प्रभाव के 12 भेद पहले गिना चुके हैं। पदगत वाक्यगत और प्रबंधगत होने के कारण इनके 36 भेद होते हैं। उभय शक्ति केवल वाक्य में ही होता है और इसका एक ही भेद होता है। इस प्रकार 4, 6, 4, 36 और 1 भेद मिलकर 51 भेद होते हैं। तदेवम् 150 भेदास्तस्य ध्वनिर्मतः शंकरेण वेरूपेण सुसंसृष्ट्या चैकरूपया वेदखा अग्नि सराह सुधैरिषु बाण अग्निशायका शुद्धै शुद्ध भेदैरक पञ्चशता योजने नित्यर्थः लिंगमात्रं तुदाह्यते अत्युत्र तस्तन युगा करलायताक्षी द्वारे स्थिता तदयुपयान महोत्सवाय सा पूर्ण कुंभनो नीरज तोरणस्त्र संभार मंगलम यत्कृतं विधते अत्र स्तनावेव पूर्ण कुंभौ दृष्टय एव नवनीरजस्त्रय इति रूपकत्व निरसत्वन्योरेकाश्रया अनुप्रवेश शंकरः धिन्वन्यत मुनि मदमूर्च्छरि लिच्छन इनि धूताध्वनीन हृदयानि मदोर्भिनानि निष्ट तंद्र चंद्र वदन वदन अरविंद सौरभ्य सौहर्द सवर्ग समिराणी अत्र निष्ट इंद्रेण लक्षणामूलध्वनीनामसृष्टि अथ गुणीभूतव्यंगम अपरम तु गणीभूतव्यंग्यम वाचादनु मे व्यंगे अपरम काव्यम अनुत्मत्वं न्यूनतया साम्येन च संभवति तत्र स्यादि तत्र स्यादित रागं काक्वक्षिप्तं च वाच्यासिद्ध्यव्यंगयम् संदिग्ध प्राधान्यं तुल्य प्राधान्यं अस्फुटं गुढं व्यंगं सुंदरं एव भेदास्तस्योदितायष्टौ इतरस्य रसादिरंग रसादिव्यंगं यथा अयं स रसनुत्कर्षी चिनस्त नवगि मदैन भ्यूरु जघनस्पर्षि निविविंस्त्रसनकरः अत्र श्रृंगारः करुणस्यांगमः मनोत्रताम प्राणैनिम् नेतु कामस्त्वत्सै सैन्यसागरव उत्तकर्णतापः हा हा कथं नु भवतो रिपुराजधानि प्रसादा सतम् सिद्धिषु तिष्ठति कामिलोकः अत्रौत्सुक्यस्त्रास संस्कृतस्य करुणस्य राजविषय करतावङ्गभावः जनस्थाने भ्रान्तम् कनकमृग तृष्णान्ति तद्धीतया पचुः वैदेहि इति प्रदीपदम मुदस्रु प्रलपितम् क्रेताल अङ्गभर्त्रो वदन परिपाटी सुघटन भयाप्तम् रामत्वम् कुशलवसुता न त्वधिगता अत्र रामत्वम् प्राप्तम् नित्यवचने अपि सप्तसत्तरेव रामत्वम् गम्यते वचनेन तु सादृश हेतु तादात्म्य आरोपणम् अविष्कुर्वता तदगोपनम् अपकृतम् तेन वाच्ये सदृशम् वाक्यार्थ अन्वयोपपादाकृत अङ्गताम् नीतम काक्वाक्षिप्तम् यथा मथनामि कौरवशतम् समरेण कोपाद दुशासनस्य रुधिरम् न पीवाम् म्यूरदस्तः संचूर्णयामि गदया न सूयो धनुरु सन्धि करोतु भवताम् नृपतिः पणेन अत्र मत्नाम्यवेता दिव्यङ्गयम् वाच्यस्य निषेधस्य सहभावे नैव स्थितम् दीपयन्रो दशीरन्ध्रमेष ज्वलति सर्वतः प्रतापस्तव राजेन्द्र वैरिवंशतवानलः अत्रान्वयस्य वेणुत्वारोपणोरूपो व्यङ्ग्यः प्रतापस्य दवानलत्वा आरोपसिद्धव्यङ्गम् अरस्तु किञ्चित् परिवृत इत्यादौ विलोचनव्यापारचुम्बनाभिलाषयोः प्राधान्ये सन्देह ब्रह्मण अतिक्रम्य त्यागो भवतामेव भूतये जामदग्न्यश्च ओमित्रमन्यथा दुर्मनायते अत्र परशुरामो रक्षः कुलक्षयम् करिष्यतीति व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य च समम् प्राधान्यम् सन्धौ सर्वश्वहरणम् विग्रहे प्राणनिग्रह अलावदिन्न निरपतौ न सन्धिर्न च विग्रह अत्रा अलावदिनाख्ये निपतौ दानशामादि शाम आदीनमन्तरेण नान्यः प्रशमोपाय इति व्यङ्ग्यम् इत्योपनाम् नामपि भट्टित्यस्फुटम् अनेन लोकगुरुणा सताम धर्मोपदेशिन अहम् व्रतवती स्वैरमुक्ते न कीमतः परम् अत्र प्रतीयमानोऽपि सत्यम् पुनश्यतीर्य योषिति वा बलात्कारोपभोगो स्फुटतया वाच्यमान इत्यगुढम् वाणेरकूङ्गम् अङ्गेण शौरीकोलाहलम् शृणान्ति ये घर्रकम्म वावोड्डाय बहुवेशयन्ति अङ्गाण अत्र दत्तसङ्केतः कश्चिल्लता गृहम् प्रविष्ट इति व्यङ्गयात सिद्धयन्तङ्गानि इति वाच्यस्य चमत्कारः सहृदय संवेदः इत्यसुन्दरम् किञ्च योदीपकत्तुल्ययोगिता आरिषु मद्यलङ्कारो व्यङ्ग्यः अक्षगुणीभूतव्यङ्ग्य एव काव्यस्य दीपकादिमुखेनैव चमत्कारविधायित्वात् तदुक्तम् ध्वनिर्कृत अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते यत्परत्वम् न काव्यस्य नासौ मार्गो ध्वनिर्मतः यत्र च शब्दान्तरादिन गोपनिष्कृतचारुमस्य विपर्यासः यथा दृष्टया केशवगोपराह गृहतया किञ्चिदम् दृष्टम् मया तेनान स्खलिताश्मिनाथ पतिताम् किम् नाम नालम्बसे एकस्वम् विषमेषु खिन्नमनशाम सर्वबलानामगति गोप्यम् गदितः सलेशम् वदा गोष्ठे हरिर्वसेच्चरम् अत्र गोपरागादिशब्दानाम गोपेराग इत्यादि व्यङ्ग्यार्थानाम् सलेशम् अतिपदेन स्फुटतयावभासः सलेशम् अतिपदस्य परित्यागे ध्वनिरेव किञ्च यत्र वस्त्वलङ्काररसादि रूपव्यङ्ग्यानाम् रसाभ्यन्तरे गुणीभावस्तत्र प्रधानकृत एव काव्यव्यवहारः तदुक्तम् तेनैव प्रकारो वयम् गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि ध्वनिर्निरूपताम् ते रसादितात्पर्य पर्यायलोचनया पुनः इति यत्र तु यत्रोन्मदानाम प्रमदाजनानाम् भ्रम्लिहम् तोणमणियम् यूखः सन्ध्याभ्रह्म प्राप् ताम् काण्डेयव्यङ्गलिप्यविधिम् विद्धते इत्यादौ रसादिनाम नगरी वृत्तान्तादि वस्तुमात्रेयव्यङ्गत्वम् तत्र तेषाम तात्पर्यविषयत्वे अपि ते तैरेव गुणीभूतः काव्यव्यवहारः तदुत्तमस्तम् तत्स पुत्र पण्डितमुख्यस्य श्रीचण्डीद दासपादहि काव्यार्थस्खण्ड बुधिस्वेदस्य तन्मयीभावेन स्वादशायामनुप्रधानभावावभासस्तावन्नानुभूयते कालान्तरे तु प्रकरणादि पर्यायलोचनया भवनप्यसौ न काव्यपदेशम् व्यहन्तुमिषः तस्यास्वादमात्राय तत्त्वात् इति केचिञ्चित् साख्यम् तृतीयम् काव्यभेदम् इच्छन्ति तदाहुः शब्दचित्रम् वाच्यचित्रम् व्यङ्गयम् त्ववरम् स्मृतम् इति तत्र यदि हि अव्यङ्गत्वेन व्यङ्गभावस्तदा तस्य काव्यत्वम् अपि नास्त इति प्रागोक्तम् सद्व्यङ्गत्वमिति चेत् किम् नामे सद्व्यङ्गव्यङ्गत्वम् आस्वाद्यव्यङ्गत्वम् अनास्याद्यव्यङ्गत्वम् वा आद्ये प्राचीनभेदयोर भवान्तः पातः द्वितीये तत्काव्यत्वम् यदि चानास्वाद्यत्वम् तदा क्षुद्रत्वमेव क्षुद्रतायाम् मनास्वादत्वाद् तदुक्तम् धनिर्कृत प्रधानगुणभावाभ्यम् व्यङ्गस्यैवम् व्यवस्थिते उभे काव्ये ततो अन्यद्यत चित्रम् विधीयते इति इति साहित्यदर्पणे ध्वनिर्गुणीभूतव्यङ्गव्याख्यानकाव्यपदेशनिरूपणो नाम चतुर्थः परिच्छेदः हिन्दी केवल वाच्य अर्थ की वर्णना के अनुसार अर्थ शक्ति प्रभाव व्यंग के 36 भेद गिनाए हैं। वाच्य लक्ष्य और व्यंग के भेद से यद्यपि अर्थ तीन प्रकार का होता है और इन तीनों से व्यंग अर्थ की प्रतीति भी होती है। यह बात मूल में ही प्रबंध अपि मतो धीरैर अर्थ शक्य उद्भव ध्वनि की व्याख्या के अंत में लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ से उत्पन्न व्यंग का उदाहरण देते हुए कह भी चुके हैं। इन तीनों अर्थों के अनुसार यदि अर्थ शक्ति प्रभाव ध्वनि के भेदों की गणना की जाए तो 36 के तिगुने 108 भेद होते हैं। परंतु यहाँ अर्थत्व सामान्य से तीनों अर्थों को एक ही मानकर केवल 36 भेद गिनाए हैं। संस्करण इति दशम परिच्छेद में भक्षमान तीन प्रकार का संकर और एक प्रकार की संसृष्टि इन चारों से परस्पर प्रत्येक का मेल होने के कारण 5304 भेद होते हैं। यहाँ वेद के चार ख से शून्य अग्नि से तीन और सर से पांच संख्या का बोध होता है। इकाई के
क्रम से ब्रैकेट बाईं ओर से ब्रैकेट बंद अंकों के रखने का नियम है, अतः उक्त संख्या सिद्ध होती है। इससे यदि शुद्ध वेदों की 51 संख्या जोड़ दे तो ईशु बराबर 5, बाण बराबर 5, अग्नि 3, सायक 5, अर्थात 5355 होते हैं। प्रश्न, पहले ध्वनियों के 51 भेद गिनाए हैं, उनको 3 प्रकार से संकर और 1 प्रकार की संसृष्टि से ब्रैकेट 4 ब्रैकेट बंद गुणन करने पर 204 ही भेद होते हैं, फिर उक्त संख्या कैसे सिद्ध होगी? उत्तर, पूर्वोक्त 51 भेदों में से प्रथम भेद एक तो अपने सजातीय के साथ संसृष्ट हो सकता है और 50 विजातियों के साथ भी संसृष्ट हो सकता है, इसलिए प्रथम भेद की संसृष्टि 51 प्रकार की हुई है। इसी प्रकार दूसरे भेद एक सजातीय के साथ और उन 50 विजातियों के साथ संसृष्ट होता है, अतः उनके 50 भेद होते हैं। पहले भेद के साथ इस भेद की संसृष्टि पहले ही आ चुकी है, अतः उसे फिर नहीं गिना सकते। इसी प्रकार तीसरा भेद एक सजातीय और 48 विजातियों के साथ संसृष्ट होकर 49 प्रकार का होता है, एवं चौथा भेद 48 प्रकार का और पांचवा 47 प्रकार का होता है। इसी क्रम से अंत तक साधन करने पर अंतिम भेद केवल सजातीय के साथ संसृष्ट होकर एक ही प्रकार की होती है। इसका विजातीय भेदों के साथ संसृष्ट पूर्व भेदों में आ चुकी है, अतः फिर उसका परिगणन नहीं होता। इस प्रकार इन सब के जोड़ने से केवल संसृष्टि के ही 1326 भेद होते हैं। इसी प्रकार तीनों संकरों के 3978 भेद होते हैं, इन सबको जोड़ने से 5304 भेद होते हैं। इन्हें शुद्ध 51 भेदों में के साथ मिलाने से मूलोक्त संख्या 5355 सिद्ध होती है। कुछ उदाहरण देते हैं, अत्युन्नत इति पीन स्तनों से सुशोभित सुदीर्घ एवं चंचल नेत्रों वाली वह कामिनी अपने प्रियतम से उपयान महोत्सव प्रकट प्रदेश से आने की खुशी में प्रकट मन में द्वार पर खड़ी हुई मांगलिक पूर्ण कलश और नवीन कमलों की बंद नवार का काम बिना ही यत्न के संपादन कर रही है। अत्र इति यहाँ उसके स्तन की पूर्ण कुंभ है और सुदीर्घ एवं चंचल नेत्रों की दृष्टि में ही कमलों की नवीन बंधनवार है। इन दो रूपक अलंकारों और श्रृंगार रस की ध्वनि एक ही आश्रय ब्रैकेट शब्द और अर्थ ब्रैकेट बंद में अनुप्रविष्ट है, अतः यहाँ संकर है। भिन्नवत इति मद से मस्त भ्रमरों की झनकार से युक्त और पथिकों के हृदय को कंपित करने वाले ये बसंत ऋतु के दिन अत्यंत आनंदित करते हैं, जिसमें निस्तंद्र चंद्रमा के समान मुख वाली कामिनियों के मुखारबिंद की सुगंध के साथ मित्रता करने ब्रैकेट उनसे मिलने के ब्रैकेट बंद कारण सगर्व ब्रैकेट गर्भयुक्त उत्कृष्ट ब्रैकेट बंद समीर ब्रैकेट वायु ब्रैकेट बंद चल रहा है। अत्र इति यहाँ निस्तंद्र इत्यादि लक्षणामूलक ध्वनि की संसृष्टि है। निस्तंद्र पद का अर्थ तंद्रा रहित और तंद्रा का अर्थ उंगना आलस्य रहित अथवा वियुक्ति सहित हो सकता है, जिसमें संयुक्त होने पर योग्यता हो। पत्थर को आलस्य शून्य कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उससे आलस्य ही की योग्यता नहीं होती है, अतएव उसे आलसी भी नहीं कह सकते। चंद्रमा को प्रकट चंचल पदार्थ है प्रकट मन निस्तंद्र या निरालस्य कहने में मुख्य अर्थ बाधित होने के कारण लक्षणा से प्रकाश युक्त होना बाधित होता है और प्रकाश का अतिशय व्यंग है। जिस प्रकार आलस्य रहित पुरुष प्रकाशित होता है, उसी प्रकार बसंत का चंद्रमा भी प्रकाशित होता है। जाड़े के दिनों में कोहरा तुषार बादल आदि के कारण जैसे चंद्रमा उंगता सा दिखता है, वह बात बसंत में बिल्कुल नहीं होती, उन दिनों वह अति स्वच्छ होता है। इसी प्रकार वायु में मित्रता सहृद और गर्व भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये भी चेतन के ही धर्म है, अतः मित्रता के में सादृश्य और गर्व से उत्कृष्ट लक्षित होता है। प्रिय मित्र प्रायः सदृश ही होता है और गर्व करने वाला अपने को उत्कृष्ट समझता है। यहाँ वाच्य और लक्ष्य अर्थ का व्यापक व्याप्य भाव नहीं होता है, इस अतः अत्यंत
तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। इन तीनों लक्षणों में अतिशय बोधन व्यंग प्रयोजन है। इस प्रकार उत्तम काव्य का निरूपण करके अब मध्यम काव्य का वर्णन करते हैं। अपरम त्वत इति, जहाँ व्यंग अर्थ वाच्य में उत्तम न हो अर्थात वाच्य अर्थ के समान ही हो, उसमें न्यून हो, उसे गुणीभूत व्यंग काव्य कहते हैं। इसमें व्यंग गुणीभूत अर्थात अप्रधान होता है। तत्र इति, गुणीभूत व्यंग काव्य में व्यंग अर्थ या तो अन्य रसादि का अंग होता है या काकु से आक्षित होता है, अथवा वाच्यार्थ का ही उपपाद प्रकट उसकी सिद्धि का अंगभूत प्रकटमान होता है। यद्वा वाच्य की अपेक्षा उसकी प्रधानता में संदेह रहता है, या वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की बराबर प्रधानता रहती है, या व्यंग अर्थ स्फुट रहता है और गुण रहता है, किंवा सुंदर होता है, और अतः इस मध्यम काव्य के 8 भेद होते हैं। क्रम से उदाहरण देते हैं। अयम सह इति, रण में कटे हुए भोली श्रवा के हाथ को देखकर उसकी पत्नी का करुणा पूर्ण कथन है। यह वह हाथ है जो रसना प्रकट करधनी को प्रकट बंद खींचा करता था, पिन स्तनों का विमर्दन करता था और निवी बंध को खोलता था। महाभारत स्त्री पर्व 24वें अध्याय में गांधारी ने श्री कृष्ण से प्रकृत पद्य कहा है। इसके पूर्व 2 पद्य इस प्रकार हैं। भार्या उपध्वज जस्यैषा करशमित मध्यम कोत्तोत्संगे भुजं भर्तृ कृपणं परिदेवती अयं सहंता सुराणां मित्राणां भयप्रतः प्रदाता गो सहस्त्राणां क्षत्रियांत करह करह। यह अयम पद में उस हाथ की तत्कालिक दशा की ओर निर्देश होता है। सह पद से पहली उत्कृष्ट दशा का स्मरण है। इस समय अनाथ की तरह रणभूमि को धूली से मलिन तथा गिद्ध गिदड़ आदि की लक्ष्यभूत यह वही हाथ है जो कभी अनेक शरणागतों की अभय देने वाले में से समर्थ शत्रुओं का दर्प चूर्ण करने में सक्त और काम कला के अति निगुण रहस्यों का मर्मज्ञ था। यही अंतिम बात रसनोत्कर्षण आदि को का काम शास्त्रोक्त क्रम दिखाकर सूचित की है। अत्र इति, यहाँ स्मार्य माण श्रृंगार अनुभूयमान करुण रस का अंग होता है। प्रश्न, इस पद्य में श्रृंगार और करुण ये दोनों रस व्यंजित होते हैं। करुण प्रधान है और श्रृंगार उसका रस अंग है। जिस प्रकार अप्रधान श्रृंगार के कारण इसे मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग माना जाता है, उसी प्रकार प्रधान करुण रस के आधार पर इसे उत्तम काव्य क्यों नहीं माना जाता। प्रधान अनेन ही व्यापदेशः भवन्ति, इस न्याय के अनुसार प्रधान रस के अनुरूप ही व्यवहार होना चाहिए। व्यंजना के अन्य सभी स्थलों में प्रधान व्यंग के अनुसार ही व्यवहार होता, फिर भी यहाँ अप्रधान व्यंग श्रृंगार के अनुसार इसे मध्यम काव्य क्यों माना गया है। उत्तर, इस पद्य में आदि से अंत तक श्रृंगार रस में व्यंजन की ही सामग्री विद्यमान है। करुण रस की प्रतीति का साधन केवल एक अयम पद है जो उस समय की अनुभूयमान दशा का बोधक होता है। इस पद से भी साक्षात करुण रस की प्रतीति नहीं होती, किंतु तत्कालिक दशा की ओर संकेत मात्र होता है। इस समय उस हाथ की क्या दशा थी और उससे करुण रस क्यों व्यक्त हुआ, इसके जानने का साधन इस पद्य में कुछ नहीं है। वह उस प्रकरण से ज्ञात होता है। इस प्रकार इस पद्य का व्यंग श्रृंगार उस प्रकरण से व्यंग करुण रस का अंग होता है। यद्यपि प्रधान उसी का प्रकरण व्यंग करुण की ही है, किंतु इस पद्य में उसके व्यक्त करने की कोई सामग्री नहीं है। इसमें जो कुछ है वह श्रृंगार का ही व्यक्त है। अतः इस पद्य का व्यंग श्रृंगार रस का प्रकरण व्यंग प्रधान करुण रस का अंग है। इसी प्रकार इसकी मध्यम काव्यों में गणना होती है। गुणीभूत व्यंग के अन्य उदाहरणों में भी जहाँ प्रधान व्यंग की सामग्री अति शून्य हो और अप्रधान व्यंग की सामग्री अत्यधिक हो, इसी प्रकार समाधान जानना। वस्तुतः चरम विचार के अनंतर प्रधान व्यंग के आधार पर गुणीभूत व्यंग भी उत्तम काव्य माना जाता है। यह बात आगे चलकर कहेंगे। प्रकारो अयम गुणी भूत व्यंगयो अपि ध्वनि निरूपताम धते रसादितात्पर्य पर्यायलोचनया पुनः इति। श्री तर्कवागीश जी ने यहाँ रसनोत्कर्षी पाठ मानकर उसका एक अर्थ यह किया है कि धो मांज कर या झाड़ पोछ कर मेरी छोटी घटिकाओं को स्वच्छ रखने वाला रसना मम क्षुद्र घटिकाम उत्कर्षयितुम मार्जनादिना उत्कृष्टतम यह अज्ञान मूलक है। पहले तो रसना का अर्थ जिह्वा या रसनेन्द्रिय होता है, क्षुद्र घटिका नहीं, दूसरे आभूषणों का धोने वाला कहने से उसमें दासत्व तो प्रतीत होता है या श्रृंगार रस अभिव्यक्त होता है। इसे हृदय लोग विचार कर ले। इसके अतिरिक्त काम शास्त्र के उक्त क्रम से यह अर्थ विघातक होता है। इस पद के अन्य पदों का अर्थ पर ध्यान देने से उक्त अर्थ की प्रासंगिकता स्पष्ट होती है। भाव के अंगभूत रस का उदाहरण मानोन्नतम इति। हे राजन, शत्रु नगरी की अटारियों में स्थित मानवती प्रियतमा की मानती मानने को उत्कृष्ट और तुम्हारी समुद्र तुल्य सेना का घोर गर्जन सुनकर संतप्त कामी वर्ग शिव शिव बड़ी दयनीय दशा में पड़ा है। अत्र इति यहाँ प्रियतमा के मनाने की इच्छा का वर्णन से औत्सुक्य और सेना का शब्द सुनकर संतप्त होने के कारण त्रास सूचित होता है। इन दोनों भावों की संधि है। कामी वर्ग की दयनीयता से अभिव्यक्त करुण रस इस भाव संधि से परिपुष्ट होता है और अनुराग इस पद से प्रधानतया सूचित होता है। उक्त करुण उसी का व्यंग है। शब्द शक्ति मूलक ध्वनि की इतरांगता ब्रैकेट धाच्यांगता ब्रैकेट बंद। उदाहरण जनस्थाने इति। धन की लालसा में भटकते हुए असफल मनोरथ की किसी निर्गुण पुरुष की उक्ति है। भय इति मैंने रामत्व तो प्राप्त कर लिया परंतु कुशल वसुता हाथ न आई। इस पद में प्रथम तीन चरण श्री रामचंद्र जी और वक्ता में श्रेष्ठ है। कुशल वसुता का वक्ता के पक्ष में कुशल ब्रैकेट अधिक ब्रैकेट बंद वसु ब्रैकेट धन ब्रैकेट बंद से युक्त होना ब्रैकेट धनिकत्व ब्रैकेट बंद अर्थ है और श्री रामचंद्र जी के पक्ष में कुश और लव है सुत पुत्र ब्रैकेट पुत्र ब्रैकेट बंद जिसके वह कुश लव सुता ब्रैकेट सीता ब्रैकेट बंद अर्थ है। मतलब यह है कि श्री रामचंद्र जी ने जिन कार्यों को करके कुशल वसुता प्राप्त की थी मैंने भी काम तो वे सब किए परंतु कुशल वसुता ब्रैकेट धनिकत्व ब्रैकेट बंद नसीब न हुई। उन्हीं कार्यों का वर्णन करते हैं। जनस्थाने श्री रामचंद्र जी कनक मृग ब्रैकेट सुवर्ण मृग बराबर मारिच ब्रैकेट बंद की तृष्णा ब्रैकेट बंद पाने की इच्छा ब्रैकेट बंद से व्याकुल होकर जनस्थान प्रकट दंड कारण की एक देश प्रकट बंद हर दूसर की छावनी में घूमे थे और मैं कनक सुवर्ण के मृग तृष्णा लोभ से व्याकुल होकर जनों के स्थानों में घूमा अर्थात धन के लोभ में फंसकर घर घर घूमा दर दर भटका। श्री रामचंद्र जी ने आंखों में आंसू लाकर प्रतिपद प्रकट कदम कदम पर प्रकट बंद हे पैदेही ये शब्द कहे थे और मैंने भी उसी तरह लोगों से वह प्रकट निश्चय से प्रकट बंद दे ही प्रकट दे दो प्रकट बंद कुछ तो दे दो यह कहा। श्री रामचंद्र जी ने लंका भरता रावण की बदन परिपाटी कंठ समूह से इसु घटन बाण प्रयोग किया और मैंने भरता की प्रकट स्वामी प्रकट बंद बदन परिपाटी प्रकट मुख चरण नाव प्रकट बंद पर उसके इशारों पर अलम प्रकट बंद प्रकट अच्छी तरह प्रकट बंद घटना प्रकट रचना प्रकट बंद हाँ हुजूर किया। यह सब तो हुआ पर वह न हुआ जिसकी चाह थी। अत्र इति यहाँ यदि रामत्वम प्राप्तम यह न कहे तो भी जनस्थाने इत्यादि शब्दों की शक्ति से ही राम स्वरूप अर्थ प्रतीत होता है परंतु उसके कह देने पर सादृश्य मूलक तादात्म्य प्रकट अभेद प्रकट बंद का आरोप प्रकट करने से उसका गोपन दूर हो गया है। यहाँ वक्ता ने अपने में रामत्व का आरोप किया है और यह आरोप सादृश्य हेतु अर्थात शब्द सादृश्य हेतु है। केवल जन स्थान भ्रंत इत्यादि शब्दों का ही सादृश्य इस अभेद रूप प्रकट तादात्म्य रूप प्रकट बंद का कारण है। अर्थ सादृश्य कुछ नहीं है। यदि यहाँ रामत्व आप्तम न कहा जाता तो भी शब्द शक्ति मूलक ध्वनि के द्वारा रामत्व की प्रतीति हो जाती। कह देने पर वही तादात्म्य आरोप प्रकट हो गया व्यंग के समान गुप्त न रहा। इस दशा में इन तादाद में आरोप का हेतु भूत जो सादृश्य प्रकट शब्द सादृश प्रकमण था वह रामत्व प्राप्ति रूप वाक्यर्थ का उपपादक होने के कारण वाच्य अर्थ का अंग हो गया। यदि रामत्व आप्तम न कहते तो प्रकरण के द्वारा प्रकृत वक्ता में अविधा शक्ति का नियंत्रण हो जाने पर भी शब्दी शब्द शक्ति मूलक व्यंजना के द्वारा रामत्व की प्रतीति होती और अप्रकृत अर्थ की असंबद्धता निवारण करने के लिए प्रकृत वक्ता के साथ राम का उपमानोपमेय भाव प्रधानता ध्वनित होता। परंतु रामत्वम आप्तम कह देने पर वही व्यंजमान शब्द मूलक सादृश्य इस वाच्य आरोप का उपपादक होने से अप्रधान हो गया। इस पद्य में व्यंग अर्थ सादृश्य वाच्य अर्थ का अंग है। मूल की पंक्ति का अन्वय इस प्रकार है, वाक्यार्थ अन्वयोपपादातया सादृश्यम वाच्य वाच्यार्थे अंगतान्वितम। श्री तर्क वागीश जी ने वाच्य के स्थान में वाच्यम पाठ समझकर इसे सादृश्यम का विशेषण माना है, परंतु सादृश्य यहाँ वाच्य नहीं है, व्यंग है, अतः वाच्यम का अर्थ किया है वाच्यवत झटिति प्रतीयमानम, यह असंगत है। इस प्रकार वाच्य शब्द में लक्षण करने का न तो यह कोई प्रयोजन है न रूढ़ी है। इस दशा में इस शब्द का उत्पादन व्यर्थ ही नहीं प्रत्युत अनर्थवाद ही है। इसके अतिरिक्त यहाँ व्यंग सादृश्य वाच्य की भांति सर्व साधारण को प्रतीत होने वाला भी नहीं, केवल शब्द सादृश्य हेतु होने के कारण में विशेष व्युत्पन्न सुहृदयों को भी प्रतीत हो सकने के योग्य है, अतः साधारण व्यंगों से भी गुणीभूत है। इसलिए श्री तर्क वागीश का कथन अज्ञान मूलक है। व्यंग्यम सादृश्यम वच्चे अर्थे अंगतामृतम, यही ग्रंथकार का आशय है। इसके अतिरिक्त यह मध्यम काव्य का प्रकरण है और मध्यम काव्य तब होता है जब व्यंग्यम अर्थ वाच्य के अनुतम हो। वाच्याद अनुतमे व्यंग्य वाच्य अर्थ यदि किसी दूसरे वाच्य का अंग हो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता। व्यंग न होने पर यह ग्रंथकार उसे काव्य ही नहीं मानते। यदि प्रकृत पद्य में वाच्य सादृश्य वाक्य अर्थ का उत्पादक मात्र हो तो यह इस प्रकरण में उद्धर्त ही नहीं हो सकता। अतः श्री तर्क वागीश जी का कथन सर्वदा असंगत है। प्रश्न, मया रामत्वम आप्तम यह कथन कहने पर प्रश्न होगा कि कथम रामत्व आप्तम। इस प्रश्न का समाधान जनस्थाने भ्रांतम इत्यादि पदों से किया गया। इस प्रकार यहाँ व्यज्यमान सादृश्य रामत्व प्रतिरूप वाच्य की सिद्धि का अंग हुआ। जब तक इस सादृश्य को प्रत्युत प्रस्तुत न किया जाए तब तक वह प्रकृत वाच्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। अतः इस पद्य को वाच्य सिद्ध व्यंग के उदाहरण में रखना उचित है। वाच्यांग व्यंग का उदाहरण इसे क्यों कहा? उत्तर, रामत्वम आप्तम इस कथन के पूर्व ही यहाँ जन स्थाने भ्रांतम इत्यादि शब्दों से ही रामत्व की प्रतीति हो चुकी है। प्रकृत वाच्य शब्दों ने तो और उल्टे उसके गोपन कृत वाच्यत्वम को कम कर दिया है, अतः इसे वाच्य सिद्ध व्यंग्यम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ जो वाच्य है वह पहले ही व्यक्त हो चुका है, पहले से ही सिद्ध है। वैरी वंशत्वा अनल, इस उदाहरण में व्यंग प्रकट भेरुत्व प्रकट बंद राजा के प्रताप प्रकट वाच्य प्रकट बंद में गवान अलत्व की सिद्धि करता है, अतः वाच्य सिद्ध व्यंग है। यहाँ यह बात नहीं, काकू से आक्षिप्त ध्वनि का उदाहरण मथ नाम इति, या कौरव के आगे युधिष्ठिर की ओर से कहे हुए संधि का प्रस्ताव को सुनकर बिगड़े भीमसेन ने सहदेव के प्रति उक्ति है, मथ नाम इति, मैं रण में क्रोध से 100 कौरवों को न मारूंगा, दुशासन की छाती से रुधिर भी न पीऊंगा और गदा से दुर्योधन की टांगे भी न तोड़ूंगा, मैं अपनी सभी प्रतिज्ञाएं छोड़ दूंगा, तुम्हारे राजा 5 ग्रामों के लेने की शर्त प्रकट पर संधि कर ले। यहाँ भीमसेन ने अपना भाई सहदेव से तुम्हारे राजा प्रकट मेरे नहीं प्रकट बन कहना अत्यंत क्रोधावेश का सूचन करता है। क्रोध में भर जाने से विलक्षण कंठ स्वर से यह कहना कि मैं दुशासन का रुधिर नहीं पीऊंगा तुरंत ही विपरीत अर्थ उपस्थित करता है, और न पिबामी इस निषेध का अर्थ साथ ही यह अर्थ प्रतीत होता है कि तुम सब भले युधिष्ठिर को अपना राजा मानो परंतु कौरवों से संधि करने के कारण मैं उन्हें अपना नृपति प्रकट राजा प्रकट बंद नहीं समझता, मैं अपनी प्रतिज्ञाएं कदापि न छोड़ूंगा, दुशासन का रुधिर अवश्य पीऊंगा और दुर्योधन का टांगे जरूर तोड़ूंगा। अत्र यह मथ नाम एवं या व्यंग अर्थ वाच्य निषेध के साथ ही प्रतीत होता है। वाच्य सिद्ध व्यंग का उदाहरण देते हैं, दीपय इति, हे राजेंद्र पृथ्वी और आकाश के मध्य में सर्वत्र प्रकाश करता हुआ वैरिवंश का दवानल रूप यह आपका प्रताप सब और प्रदीप्त हो रहा है। यहाँ प्रताप को दवानल बताया गया है, दवानल का प्रताप में आरोप है किया गया है। दवानल जंगल में लगी आग का नाम है, अतः जब तक जंगल की तरह कोई दाय वस्तु प्रताप के लिए निश्चित न हो जाए तब तक प्रताप को दवानल कहना उत्पन्न नहीं होता। इसलिए वंश और कुल दोनों के वाचक श्रेष्ठ वंश पद के प्रयोग से शत्रु कुल में वंश के जंगल का स्वरूप व्यंग होता है। इस वाच्य दवानल की सिद्धि का अंग है। व्यंजना द्वारा प्रतीत हुआ शत्रु कुल का वंशत्व प्रकट वंश का रूप प्रकट वंश प्रताप में वाच्य दवानलत्व का साधक है। संदिग्ध प्रधान व्यंग का उदाहरण, अरस्तु इस पद्य में नेत्र व्यापार का ही प्रधानता है या चुम्बना अभिलाष व्यंग है, इसमें संदेह है या पहले आ चुका है।
ब्राह्मण राक्षसों के उपद्रव से क्रोध परशुराम का रावण के प्रति संदेह है। ब्राह्मणों के ऊपर आक्रमण करने का परित्याग तुम्हारे ही कल्याण के लिए है। याद रखो परशुराम भी तुम्हारे लिए इसलिए मित्र बने हैं, नहीं तो ब्रैकेट यदि ब्राह्मणों पर भी तुमने आक्रमण शुरू किया तो ब्रैकेट वह परशुराम बिगड़ जाएंगे। यहाँ व्यंजना से यह अर्थ प्रतीत होता है कि परशुराम राक्षसों के कुल का एकदम ध्वंस कर डालेंगे। इस व्यंग और उक्त वाक्यार्थ का यह पद में तुल्य प्राधान्य है। अस्फुट व्यंग का उदाहरण, संधव इति, संधि करने में सर्वस्व छीनता है और विग्रह ब्रैकेट युद्ध ब्रैकेट बंद करने में प्राणों का भी निग्रह होता है। अलाउद्दीन के साथ न संधि हो सकती है न विग्रह। अत्र इति, अलाउद्दीन के साथ साम और दान के सिवा कोई उपाय नहीं चल सकता। यह बात यहाँ व्यंग है परंतु यह इतनी अस्फुट है कि बुद्धिमानों की समझ में जल्दी नहीं आती, औरों की तो बात ही क्या। अगुण व्यंग का उदाहरण, अनेक लोगों के गुरु कहने में इन धर्मोपदेश सक्की महाराज ने मुझ व्रतवर्ती प्रकट पतिव्रता प्रकट बंध को दृष्टता पूर्वक बस अब इसके आगे कहने से क्या। अत्र इति, इस पद्य में शाक्य मुनि का तिरक स्त्री के साथ बलपूर्वक उपभोग प्रतीत होता है परंतु वह वाच्य की तरह अत्यंत स्फुट है। साधारण गंवार आदमी भी उसे झट समझ सकता है, अतः यह अगुण व्यंग मध्यम काव्य है। उत्तम ध्वनि वही होती है जो न तो अगुण हो और न अत्यंत गुण हो। यही कहा है, नान्ध्री पयोधर इवादितराम प्रकाशो नो गुर्जिस्तन इवादितराम निगुण अर्थो गिराम पेतः पेतश्च कश्चित सौभाग्यमेति मरहत वधु कुचामह। असुंदर व्यंग का उदाहरण, वारिणम वानीरकुब्जो अंगिनी सुनिक कुलाहलम श्रृंगारवस्था गृहकर्मव्यापीताया बंधाः सिंधन अंगानि।
अर्थ, बेत के कुंज में से उड़े हुए पक्षियों का कोलाहल सुनकर घर के काम में लगी हुई वधु का अंग शिथिल होते हैं। दत्त संकेत कोई पुरुष लता गृह में पहुंच गया, यह यहाँ व्यंग है। उसकी अपेक्षा सीधयंत अंगानी, इसका वाच्य अर्थ ही अधिक चमत्कारी है, अतः यह व्यंग असुंदर है। किंच इति, इसके सिवा दीपक तुल्योगिता आदि अलंकारों में से जो उपमा ब्रैकेट सादृश ब्रैकेट बंद आदि अलंकार व्यंग रहते हैं उन्हें भी गुणीभूत व्यंग समझना, क्योंकि वह काव्य का चमत्कार दीपक आदि के कारण ही होता है। तदुक्तम इति, यही ध्वनिकार ने कहा है। अलंकार इति, प्रस्तुत अलंकारों की अपेक्षा अंत अलंकारों की प्रतीति होने पर भी यहाँ काव्य तत्परक अर्थात प्रधानतया उसके तात्पर्य में प्रवृत्ति नहीं होती है, उसे ध्वनि का मार्ग न समझना। तात्पर्य यह है कि दीपक आदि में यद्यपि उपमा आदि की प्रतीति होती है परंतु उनमें काव्य के तात्पर्य का पर्यवसान नहीं होता, वे प्रधानतया उस काव्य के व्यंग नहीं होते, अतः वे ध्वनि के उदाहरण नहीं हो सकते, गुणीभूत व्यंग ही हो सकते हैं। यत्र इति, छिपी हुई व्यंग बात की रमणीयता जहाँ किसी दूसरे शब्द आदि से काम हो जाए उसे भी गुणीभूत व्यंग ही समझना। जैसे दृष्टया, स्वयं दूती की उक्ति है, हे केशव गवों की ब्रैकेट उनके खुर से उड़ी ब्रैकेट बंद
धूलि से कलुषित दृष्टि हो जाने के कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए यहाँ जंगल में भूल पड़ी हूँ। हे नाथ, दुख के पतित भटकी हुई मुझको क्यों नहीं सहारा देते? मुझे रास्ता बता दो। विषम स्थानों में पड़कर खिन्न होते हुए सभी अबलो अथवा अबलाओं के तुम ही एक शरण हो, तुम दीनानाथ हो। इस प्रकार गोष्ठ में गोपी के द्वारा लेस प्रकटबंध से प्रशंसित कृष्ण तुम्हारी सदा रक्षा करें। अत्र इति, यहाँ जो अर्थ श्लेष से प्रतीत होता है उसे श्लेषम पद ने अत्यंत स्फुट कर दिया है, अतः गुणीभूत व्यंग हो गया, क्योंकि व्यंग अर्थवाच्य का अर्थ अंग हो गया है। यदि श्लेषम पद को छोड़ दे तो यह ध्वनि का ही उदाहरण होगा, क्योंकि दूसरा व्यंग अर्थ प्रच्छन्न रह सकेगा। इसका दूसरा अर्थ यह है, कोई गोपी श्री कृष्ण के पास गोष्ठ जहाँ गवे खड़ी होती है में गई है, वहाँ वह सामने ही खड़े देखते, परंतु उसे किसी दूसरे गोपाल का भ्रम हुआ, अतः पहले तो कुछ न बोली, परंतु पास जाकर देखने पर जब भ्रम दूर हुआ तो बड़ी संकुचित हुई। यह सोचने लगी कि मैंने इनका न तो कुछ शिष्टाचार किया और न कोई प्रेम की बात कही, भ्रम में ही रही कहीं इससे ये मुझे प्रेम शून्य न समझ ले। इसलिए श्लेष से अपनी निर्दोषता सिद्ध करती हुई प्रार्थना करने लगी कि हे केशव, मेरी दृष्टि गोप के राग में हरित हो गई थी, इस कारण मैंने कुछ नहीं देखा, इसलिए यह स्खलित हुई हूँ अर्थात भूल गई हूँ, अब पतित होती हूँ। हे नाथ, मुझे क्यों नहीं ग्रहण करते? विषमेशु ब्रैकेट कामदेव ब्रैकेट बंद से खिन्न मन वाली सब अबलाओं के आप शरण्य हैं। किंच इति, जहाँ वस्तु अलंकार तथा रसादि रूप व्यंगों का प्रधान रस में गुणी भाव हो जाए, वहाँ प्रधान रस के कारण ही काव्य व्यवहार ब्रैकेट उत्तम काव्य ब्रैकेट बंद जानना। तदुत्तम इति, यह ध्वनिकार ने ही कहा है। प्रकार इति, यह गुणीभूत व्यंग रूप काव्य भी प्रधान रसादि विषयक तात्पर्य की आलोचना करने से ध्वनि बनता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ कहीं गुणीभूत व्यंग प्रधान रस का अंग होता है उसे ध्वनि ही कहते हैं, प्रधान रस के कारण उसे उत्तम काव्य माना जाता है, और जहाँ वह प्रधान रस का अंग नहीं होता, केवल नगरी आदि के वृत्तांत वर्णन का अंग होता है, वहाँ उन्हीं अप्रधान ध्वनियों के कारण काव्य का व्यवहार होता है। प्रधानतया तात्पर्य विषय न होने पर भी वे ध्वनि काव्य व्यवहार के प्रयोजक होते हैं, जैसे यंत्रों मदानाम, जिस नगरी के ऊंचे ऊंचे प्रासादों में जड़े मणियों का गगनचुंबी प्रकटाकाश व्यापी प्रकटबंध प्रकाश यौवन मद से मस्त रमणियों को संध्या काल के बिना ही संध्या का भ्रम पैदा करके काम कलाओं से पूर्ण भूषण आदि रचना में प्रवृत्त करता है, यह प्रतीयमान श्रृंगार नगरी वर्णन का अंग है, किसी प्रधान रस का अंग नहीं है। अप्रधान व्यंग से कैसे काव्य व्यवहार होता है, इस विषय में आप अपने पूर्वज चंडीदास का प्रमाण देते हैं। काव्यार्थस एति, काव्य का परमार्थ अखंड बुद्धि एक ज्ञान से संवेद्य होता है, तन्मय भाव प्रकट तन्मय होने के कारण प्रकट बंद अनेक पदार्थ भी एक ज्ञान में ही भाषित होते हैं, अतः काव्यार्थ के आस्वाद के समय किसी प्रधानता का अनुभव नहीं होता, और आस्वाद के अनंतर प्रकरण आदि की आलोचना करने पर यद्यपि प्रधानत्व और अप्रधानत्व प्रतीत होता है, परंतु वह पूर्व से वृतांत काव्य व्यवहार को ही नहीं रोक सकता, क्योंकि वह व्यवहार आस्वाद मात्र से ही हो जाता है। इस प्रकार ध्वनि तथा गुणीभूत व्यंग का वर्णन कर चुके, अब काव्य प्रकाश के समस्त सम्मत चित्र नामक तीसरे काव्य का खंडन करते हैं। केचिद इति, कोई चित्र नामक तीसरा भेद भी मानते हैं, जैसे शब्द चित्रम इति, व्यंग अर्थ में रहित अधम काव्य दो प्रकार का होता है, एक शब्द चित्र दूसरा अर्थ चित्र। तश्च, यह ठीक नहीं, अब अर्थ व्यंग पद से यदि यह तात्पर्य है कि व्यंग मात्र से एकदम शून्य हो तब तो वह काव्य ही नहीं हो सकता, यह बात पहले ही प्रथम परिच्छेद में कह चुके हैं। और यदि ईषद अर्थ में नय का प्रयोग मानकर अव्यंग अर्थ पद का ईषद व्यंग माना जाए तो प्रश्न यह है कि इस पद का क्या तात्पर्य है। क्या आस्वाद्य वस्तु के थोड़े व्यंग होने पर इस्यालु ईषद व्यंग विवक्षित है अथवा अनास्वाद वस्तु के व्यंग होने पर। यदि पहला पक्ष मानो तो पहले दो भेदों ध्वनि गुणीभूत व्यंग में ही इसका अंतर्भाव हो सकता है और यदि दूसरा पक्ष अनास्वाद्य व्यंगत्व मानो तो वह काव्य ही नहीं हो सकता क्योंकि अस्वाद आस्वाद ही काव्य होता है। यदि अनास्वाद है तो क्षुद्र ही होता, क्षुद्रता होने पर भी अनास्वाद्यत्व हुआ करता है। यही ध्वनिकार ने भी कहा है प्रधान इति। इस प्रकार प्रधान और अप्रधान रूप से व्यंग अर्थ के अवस्थित व्यवस्थित होने पर भी दो प्रकार के काव्य कहलाते हैं और जो इनमें भिन्न है उन्हें चित्र कहते हैं। वस्तुतः प्रकृत कारिका में विश्वनाथ जी के मत का समर्थन नहीं होता, प्रत्युत वह इसके विरुद्ध है। उसको अपने मत का उपष्टम्भक बताना अज्ञान मूलक है। प्रकृत कारिका में प्रधान व्यंग और गुणीभूत व्यंग के अतिरिक्त काव्य को चित्र काव्य कहा है, काव्य के अतिरिक्त समस्त वस्तुओं को चित्र नहीं बताया है। इसी से इसकी अगली कारिका में इसी चित्र काव्य का विवरण किया है। चित्रम शब्दार्थ भेदेन द्विधच व्यवस्थितम तत्र किंचित शब्द चित्रम वाच्य चित्रम मतः परम। काव्य प्रकाश ने इसी के अनुसार चित्र काव्य का वर्णन किया है। प्रकृत कारिका के उत्तरार्ध का अर्थ है ततः काव्य द्वयात् यत अन्यत काव्यम तत चित्रम कथ्यते। यदि इस का वाक्य में काव्य का संबंध न किया जाए तो उक्त दो काव्यों में अतिरिक्त संसार में जो कुछ भी है वह सब चित्र कहने लगेगा। ग्रामीणों की बातचीत, बाजारू गलियां और ईट पत्थर तक सब चित्र कहने लगेंगे। इति विमलाया चतुर्थ परिच्छेद। इस प्रकार साहित्य दर्पण का चतुर्थ परिच्छेद समाप्त हुआ।